نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم نافع اور ہمارے اسلاف. اس سیریز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلاف یعنی جو ماضی میں لوگ گزر چکے تو انہوں نے نفع مند علم لینے کے لیے کیا کچھ کیا اور پھر اس کے بعد ان کا جو یعنی جب انسان دوسروں کو نفع دینے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کیا عادات آتی ہیں یا کیا چلی جاتی ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پہلا اہل علم کا اپنی تعریف سے پرہیز کرنا, پیج نمبر 70 ہے. اور اس کو سنتے وقت ذہن میں ہمیشہ رکھیے کہ یہ عالموں کے لیے نہیں ہے, ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ناطے سے علم کے ساتھ جڑا ہی ہوا ہے. کوئی علم لے رہا ہے, کوئی دے رہا ہے, کسی کا بھی پہلے درجے کا, کسی کا دوسرے, کسی کا اس سے آگے. لیکن یہ ہے کہ جب ہمارے پاس علم آ جاتا ہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز پھر ہمارے اندر بھی آنے کی ضرورت ہے. یحییٰ بن نبی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ سے کوئی مسئلہ پوچھا. انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کہاں کے رہنے والے ہو. میں نے عرض کیا یمامہ کا رہنے والا ہوں. انہوں نے کہا یحییٰ بن نبی کثیر کی درگاہ. مراد یہ تھی کہ ان سے پوچھ لیتے, مراد پتہ کہ دوسرے شہر آ کے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, اپنے شہر کے لوکل عالم سے پوچھ لیتے. یحییٰ بن نبی کثیر کہتے ہیں اس دن سے میرے اندر خود پسندی داخل ہو گئی جو ایک عرصے تک میرے دل سے نہیں نکلی. تب کوئی کسی سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں فلاں آدمی ہوں, فلاں جگہ سے آیا ہوں, بلکہ سیدھا طالب علم بن کر سوال کرتا تھا. کیا سمجھ آئی؟ عطا بن رباح ایک بہت بڑے عالم تھے. ان کے پاس ایک شخص یحییٰ بن ابی کثیر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مسئلہ پوچھتے ہیں. پوچھا ادھر سے, اب یہ تو علم لینے گئے نا, لیکن جس سے لینے گئے انہوں نے انہیں کا ہی نام لیا. کیا سمجھ آئے کہ یہ خود بھی علم والے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھ لیتے. تو جب انہوں نے ان سے کہا تھا اب اپنے ایک عالم کے پاس آپ خود کچھ سیکھنے گئے, اس نے آگے سے آپ کا ہی نام لے لیا, تو تکبر آ گیا نا, بڑائی بن گئی. اب بڑائی تو ہوئی تو اس سے خطرہ کیا ہوا؟ خود پسند ہو گئے کہ اچھا جی عطا کہہ رہے ہیں کہ ان میرے سے پوچھ لیتے تو میں بھی کوئی بڑی چیز ہی ہوں گی نا. تو علم کیا, عمل کیا ملا؟ کہ اپنا تعارف سیدھا سا طالب علم کا کروانا چاہیے. اور یہ بہت بڑا ایک امتحان ہوتا ہے. بعض دفعہ کبھی کوئی علمی محفلیں ہوتی ہیں تو وہاں لوگ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو یعنی ناموں اور صاحب کو لاکھوں سے اس کو متعارف کرواتے ہیں, حالانکہ یہ چیز بندے کو پھر بعض دفعہ بڑا بنا دیتی ہے. اس دفعہ ایک پاکستان کے ٹرپ میں میں نے خود بھی ایک ایکسپیرینس کیا. تھوڑا بہت علم کی وجہ سے کچھ لوگ جانتے ہی ہیں, تو ایک کسی مدرسے میں فل ڈے جیسے ان کی تکمیل کا اور اس طرح بڑا پروگرام تھا, لاہور سے باہر تھا, تو اور ساتھیوں کے ساتھ میں بھی گئی. اب ان کی خواہش کیا تھی کہ جو بسیں چل رہی ہیں یا جو گاڑی ہے, یعنی وہ سارے لوگ جو تھے بھی وہ ڈونرز ٹائپ کے لوگ, قصہ مختصر میں اپنے ان پہ گئی. جب بندہ ایک ساتھ بس گاڑی سے اترتا ہے تو پھر مجبوری ہوتی ہے کہ ایک ساتھ بیٹھے, لیکن دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اکیلے گئے تو کراؤڈ بہت ظاہر زیادہ تھا, ایسے موقعوں پہ آپ کو ہوتا ہی ہے. تو میرے پاس پوری چوائس تھی کہ میں ادھر بیٹھوں. جب میں اندر گئی تو اب وہ لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں, اور اللہ کے حکم کی بات ہے کہ جب میں اندر گھسی تو انہی میں سے ایک سسٹر جو تھی وہ ملی مجھے نا. ارے آپ آئی ہوئی, اچھا اچھا. اس نے فوراً اپنے ساتھ ایک دو لڑکیوں کو کہا, مجھے کہیں گی ان کو اس ڈور سے لے جاؤ جہاں ڈونر بیٹھے ہیں. بس یہ لفظ مجھے کھا گیا, مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ ڈونرز کا کوئی ایک ڈونر سمجھ دینا, ڈونیٹ کرنے والے بڑے لوگ تھے, کھاتے پیتے لوگ تھے, اور گاؤں نما ایک مدرسے میں گئے تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ فیلنگ آتی ہیں. خیر وہ گئے اندر, اس نے مجھے ادھر سے نکالا پیچھے سے لے کے نا, تو وہاں میں دیکھا تو واقعی پیچھے ہال میں نا چیئرس لگی ہوئی تھیں اور مجھے سارے چہرے دکھ رہے تھے کیونکہ میں تھی. میں نے انہیں کہا شکریہ جزاک اللہ, آپ جائیے, میں فائن. اس کے بعد پھر جو میں نے جو آبزرو کیا, میرا حال ہے میرے اپنے ٹرپ میں, پورے ٹرپ میں سب سے خوبصورت چیز میرے لیے یہ تھی. میں نہیں بیٹھی کرسی شرسی پہ, میں نیچے گھس گئی, لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں تو طالب علم تھی, زمین پہ تھا, پیچھے جو ان کی آخری لائن تھی میں اس کے سرے پہ بیٹھ گئی. اب اس کے بعد کیا ہوا, ظاہری بات ہے پروگرام شروع ہوا تھا, ابھی ہم نے جو سنا تو وہ آگے تھا لیکن ابھی بچیوں کا چل رہا تھا پروگرام. اس کے بعد 2-2.5 گھنٹے میں وہیں بیٹھی کیونکہ پروگرام بہت لمبا بھی تھا, انہوں نے بیچ میں اسٹریچ نہیں کوئی دیے لیکن اپنا تھا. پھر کئی بار جیسے سب کے ساتھ جو ہو رہا تھا کہ آگے ہوں, फिर कोई लड़की पीछे से आती जी ये खाली जगह पुर करे आगे, क्योंकि लोग अभी आ रहे थे, हम शुरू में चले गए थे। मैंने उस दिन यकीन करें आपके इस क्लासरूम को, इन कुर्सियों को, इन मेज़ों को, अपनी तकमीलात को, अपने बड़े प्रोग्रामों को, एक एक को इस नज़र से देखा है कि मैं अपने दिल से कह रही थी कि आज मैं एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनने आई हुई हूँ। फिर मैंने उनके ड्यूरेशंस देखे, उनके आवाज़ कम है कि ज़्यादा है, कानों में ज़्यादा पड़ रही है, फिर स्टाफ यानी जो स्टेज पे लोग आके प्रेजेंट कर रहे हैं उनका बिहेवियर, यानी ज़ाहिर है मुझे तो ऐसे लगे मेरे सामने चारों तरफ आईने लग गए आगे पीछे। मैंने बहुत सीखा। अच्छा, अब मैं पूरा प्रोग्राम लिया, अब ये तो हुआ उसके बाद, क्योंकि वो अब वहाँ कोई किसी को बता तो नहीं सकता, ये मुझे पता था कि जो मेरे साथ आए वो ज़रूर मेरा मुझे देख रहे होंगे। अल्लाह के हुक्म से वो जगह इतनी दूर पा रहा है कि उसमें फ़ोन चलते ही नहीं, नेट भी बंद था। मैंने और भी शुक्र किया, कोई मेरे पास किसी को ढूंढने का, आने का, जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रोग्राम पूरा होता गया, एक से दूसरी चीज़ें चलती रही, कई दफ़ा मैं थकी भी क्योंकि आदत भी नहीं होती नीचे बैठने की। फिर मैंने ये भी सोचा कि जब किसी प्रोग्राम में कोई नीचे बैठे हुए लोग हो तो उनको कितनी देर के बाद कम से कम एक स्ट्रेच देने की ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया, उन्होंने कहा सब अपनी जगहों पे बैठे रहे, क्या होगा। वो अपनी साथ साथ चीज़ें, अपने स्कूल की वीडियोस दिखा रहे थे, पीछे से बड़े बड़े जो पराते टाइप नहीं होती उसमें खाने के डब्बे यानी स्टेरियोफोम के डब्बे जैसे चलते हैं, उसमें कुछ खाना होगा और हर डब्बा प्लास्टिक की थैली में बंधा हुआ था। लड़कियों ने पीछे से आके ना ऑडियंस में देने शुरू कर दिए। तो मैं ये भी देख रही थी कि जब बड़ा क्राउड हो तो उनको खाना सर्व करने का क्या होगा तरीका। खैर, वो डिब्बा मेरे पास भी आया तो मैंने, उसने मुझे दिया तो मैंने अपनी अगली को दे दिया। मैंने खाना भी नहीं था, मुझे भूख भी नहीं थी, बहरहाल किस्म उससे वो मैंने डब्बा आगे कर दिया। थोड़ी देर आगे गुजरे तो हम फिर एक और आ गई, जब उसने देखा मेरे पास डिब्बा नहीं है तो उसने मुझे फिर डब्बा दिया। मैंने सोच के पकड़ लिया कि जो भी होगा, मैंने उसको रख लिया अपने पास नीचे ऐसे ही रख दिया, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, चलती उन्होंने कहा जी आप सारे अब नमाज़ पढ़ लें और ये वो। अब क्या हुआ, मैं प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वहाँ से उठी, मेरा दिल था मुझे कोई ना देखे, यानी मैंने वल्ला ही, मैं आपको ये बात क्यों सुना रही हूँ कि मैंने हर जगह जो आपको इज्जत मिले, हर जगह जो मेज़ कुर्सी आपको लगा दिया जाए और हर जगह आपके लिए लोग इस तरह से करें, बल्कि इस प्रोग्राम से पहले एक मेरा हले दिन अगर मैं ना भूलूँ, शायद इसी से 2 दिन पहले या उससे 1 वीकेंड पहले एक ऐसे शहर में प्रोग्राम हमारा हुआ जिसका नाम भी नहीं आप जानते होंगे और मैं भी नहीं बताती, यानी मेरी ज़िंदगी का वो पहला एक्सपीरियंस था। मुझे जैसे नॉर्वे नहीं था कभी पता, वैसे वो भी नहीं पता था किधर है कहाँ है, लेकिन 3 साढ़े 3 घंटे दूर था इस्लाम लाहौर से। यकीन करें कि वो जो हमारी एडमिन थी वो फ़ोन पे बता रही थी, तस्वीरें भेज रही थी शादी हॉल की, हमने 300 सोफ़े लगाए हैं आगे, 1000 कुर्सी है। मैं दिल में हंसूँ ना, मैं नहीं ना उस स्कूल का नाम जानती तो वो कहाँ जानते होंगे, और उसके फ़ोन और उनकी जो टीम वर्क थी, मैं कहती वो तो एक अलग सेशन दूंगी आपको ज़िंदगी रही। तो उस सिस्टर का कॉम क्या, वो मतलब उसमें आप कह लीजिए कि कॉन्फिडेंस था, ये मिली कहाँ से, बहरिया में हमारा एक कोर्स चल रहा है क्लास, उसमें ये पहली दफ़ा, मेरा पहले ही दिन में जाते ही मैंने शिफात का बयान शायद बुक पढ़ाई है ना, तो उस बुक के पहले ही या दूसरे दिन ये सिस्टर आई, बाद में मुझे मिलाया गया, मिली ये इनके साथ एक दोस्त थी कि हम वहाँ से आए हैं। मैं हैरान हो गई कि इतनी दूर से कोई इल्म के लिए आ सकता है, वही जो लोग सभी करते हैं ये बातें, दूर से सुनते हैं, दिल थी ख्वाहिश थी आ जाए, आके हर बैठी, फिर बाद में थोड़ी देर चली गई। फिर उसके बाद से वो पीछे लगी हुई थी हमारे के वहाँ के लिए टाइम दें और फिर ये है वो है। मैंने कहा कि मेरे पास पहले ही जो जगह है वो कम है, तब तो वैसे भी जल्दी आना था, लेकिन यकीन करें जब मैंने टिकट एक्सटेंड करवाई फिर मुझे लगा कि किसी की हिदायत बुला रही होगी। उनका फिर मैसेज आ गया, पहले सर थोड़ा मुझे छोड़ के दूसरे शहर चले गए थे तो मुझे ट्रैवलिंग पे मुश्किल होती है, इनके बगैर मैं दूसरी जगह जाती नहीं। जब ये वापस आ गए उधर से कराची से, तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि आप उनसे बात कर लें, फिर बात करें, और फिर मेरी भी क्रैम है, कभी नए बंदे के साथ जाऊँ ना मैं सिर्फ 2-3 मिनट फ़ोन पे ज़रूर बात करती हूँ, मुझे उससे अंदाज़ा हो जाता है कि किस टाइप का, कुछ तो मेरे जज्बाती ही होते हैं शोर मचाने वाले, कोई रोते ही रहते हैं, कोई चल बुलल्ले, कोई बहुत डिसेंट है। यकीन करें मैं कहीं दर्स में ही जा रही थी तो इन्होंने कहा कि आप इनको फ़ोन करें, उसी तुम कहा गया, मैंने 1.5 मिनट बात की होगी उससे, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। जो उसके बात करने का अंदाज, अगर मैं उसको मिली ना होती, मिलने में वो देखने में बिल्कुल सिंपल हम जैसी एक सादी सी लड़की और औरत है, बट जो उसके बात में, क्योंकि वो टीचर है, कॉलेज स्कूल चलाती हैं, कॉलेज में है, और उस हर बात में वो नाम ले रही थी अपनी टीम का कि हमारे पास टीम है, हमारे पास इतने टीचर्स हैं, ये बस 1.5 मिनट बात करके मुझे अंदाज़ा हो गया कि करने वाला काम बंदा अच्छा है, कोई आए ना आए, छोटी जगह है, गरीब बस्ती भी है, बड़े उस जगह की दो खूबियाँ, यानी आपको इतना सा बता दूं कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद ना बनता तो वो बनना था, वो बना ही शहर, प्लान ही सारा कैपिटल कैपिटल के लिए हुआ था, लेकिन फिर कुछ सर्कमस्टांसेस जो मुझे वहाँ जाके लोगों ने सुनाए तो उसकी वजह से इस्लामाबाद बन गया। अब आपको जो कहानी लंबी उसको छोड़ के स्किप करूँ कि जब हम वहाँ गए और जो प्रोग्राम हुआ वो 1300 लोग कह रहे थे, और वहाँ उस दिन उनके रिकॉर्ड के मुताबिक 2700 यानी 3000 के करीब लोग हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा क्राउड नहीं देखा कि वहाँ आपके रिसेप्शन से लेके यहाँ तक वो बड़ा एक सिंगल हॉल था, और मैं वहाँ से चल के शुरू हुई और मुझे सिर्फ लोग थे, और वो हॉल फुल हो चुका था दर्स होने से पहले, और दूसरा फिर उन्होंने खोला, ज़ाहिर है कि उधर खोलना था पूरा वक्त। और मैं हम बाहर से जब गाड़ी में से निकल रहे थे आ रहे थे तो झुंड के झुंड लोग आ रहे थे, जैसे शादियों में नहीं पूरी पूरी टोलियाँ आती, तो मैंने कई औरतें बाहर जा रही होंगी कामों पे अपने कुछ गुजारों में, लेकिन वो हर टोली का रुख उस शादी हॉल में था, ग्रैंड कैसल कोई बड़ा हाथ शादी हॉल भी कहती है हमारे मुल्क ये शहर का पहला है। उस दिन के प्रोग्राम के बाद उन्होंने बताया कि आज इस शहर की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ है। हॉल वाले कहते हैं कि हमने शादियां भी अरेंज की हैं, 1000-1200 से बड़ी शादी नहीं होती, आज हमारा ये पूरा है। और वो लोग कहाँ से आए हैं, एक तो उनका इखलास और दूसरी उनकी टीम वर्क, बिलीव मी मुझे कौन जानता था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इतने लोग सुनते हैं नूरुल कुरान के थ्रू आपको कि आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरे मुझे कोई नहीं जानता, मेरे लिए कोई नहीं आया, मैं सच बताऊंगी, ये उनका इखलास बहुत था। उन्होंने वहाँ से गाड़ी भेजी और फिर लिया, यानी जितनी एफर्ट होती है तमाम उतना ही होता है, और तलब बहुत थी। मेरा सबसे कम बस इतना ही है जो मैंने थोड़ा सा बोला, लेकिन उनकी टीम वर्क मैं देख के हैरान हूँ। मैं एक आना था उसी दिन वापस, फिर कुछ इस तरह हुआ कि अगले दिन फिर फैसलाबाद जाना है, तो मैं वापस 3.5 घंटे रात को लाहौर पहुँचूँ, फिर उठ के सुबह फैसलाबाद जाऊँ, तो बहुत एक दिन बीच में गैप था। खैर किस्सा मुख्तसर वहाँ रात का हुआ, रात का हुआ तो कहने लगी कि हम एक दूसरा यानी एक और दर्स रख लेते हैं, जुमा था उस दिन मुझे याद है, तो जुमा था दर्स रख लेते हैं। मैंने कहा हाँ मुझे खाली तो रहना नहीं, फिक्र नहीं करें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एटॉमिक एनर्जी सिस्टम वहाँ है, हमारी पूरी इस वक्त पाकिस्तान की शाहराग वो मुल्क है, वो शहर है। कहने की वहाँ एक ऐसा जगह है जहाँ आने की इजाज़त नहीं है सिक्योरिटी की वजह से, हर एक को नहीं आने देते वहाँ की शादियाँ, लोग रिश्तेदारों को नहीं बुला सकते, मैं उधर कोशिश करती हूँ, और सारे पाकिस्तान की पढ़ी लिखी क्रीम वहाँ रहती है और उनका एक खास सेटअप है उधर रखे। उन्होंने बात की, अगले दिन कहती ओके हो गया, क्लब में उन्होंने रख लिया, जुमा पढ़ेंगे जुमे के बाद ये। मैंने कहा चलिए ये तो और भी अच्छा हो गया, अगर पढ़े लिखे लोग हैं थोड़े भी हों ठीक है, लेकिन कि 200-300 बंदा उधर भी जमा हो जाएगा। खैर मुझे कुछ नहीं था उससे लगता, लेकिन यह कि वो उन्होंने वो दूसरा भी दिन हमारा वहीं रखा, फिर उस दिन वहाँ से रात को हमें फिर फैसलाबाद छोड़ा। मैं वहाँ का वो सारा प्रोटोकॉल देख चुकी थी जो इसमें से पढ़ रही हूँ इस वक्त, मेरा भी दिमाग बहुत फूल सकता था, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने अपनी अना को और अपने आप को अपनी असल दिखाने के लिए उस पूरे प्रोग्राम में खुद को ज़मीन पे बिठाया। फिर उसके बाद मैं उधर से उठी, अपने साथियों से नज़रें चुराती हुई कोने में गई, कुछ और औरतें भी नमाज़ पढ़ी थी, मैंने भी नमाज उसी में कहती अल्लाह मैं कर ली, जैसे हज में और हरम में जाके आपको आप बादशाहों किसी मुल्क के पाँव पे पाँव रख के लोग चले जाते हैं, उस दिन बिल्कुल मैं ऐसे ही खा रही थी। तो नमाज़ पढ़ी मैंने, जब नमाज़ पढ़ी बाकी खा रहे थे, मैंने सोचा कि जब ये खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकती, अब तो भूख लगी गई है। मैंने डब्बा खोला, उसमें उन्होंने एक चम्मच और साथ वो नेपकिन भी रखा हुआ था प्लास्टिक की, मैंने उसमें से चावल खाने शुरू कर दी ऐसी ज़मीन पे। मेरे साथ वाली के बच्चे इतना रो रहे थे खपा रहे थे उसको, मैं बिल्कुल अपने आप को सोचा गाँव की एक पेंडू सी लड़की औरत मॉम जो भी समझे समझ रही थी, मैंने कहा कि ये इससे क्या होता है, तो थोड़ा सा खाया मैंने जितना खाना था, बाकी डिब्बा बंद किया रख दिया। मैं उधर से बाहर आई, अब जब बाहर आई तो उसके बाद अब मुझे यही था कि क्या होगा आगे। बाहर आई तो फ़ोन के सिग्नल्स आने शुरू हो गए, सिग्नल आए तो मिस कॉल है, तो ये है तो वो है, यानी उसके बाद सारी बात का खुलासा कोई आधे पौने घंटे के बाद उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। जब मुझे ढूंढा आप जी सीधी आए, सीधी गई यकीन करें लंबे कमरे में खूबसूरत, यानी जो वो अपनी हैसियत से भी बढ़ के कर सकते थे, उन्होंने दस्तरखान लगाए हुए, बाहर तो वो पुलाव के डब्बे मिले, अंदर से सालन भी थे नान भी थे, तो खाने चल रहे थे हलवे भी थे, खाना खाए थी। मैंने कहा मैंने खा लिया, मुझे कोई नहीं, मैंने नहीं खाया वहाँ कुछ। मैंने ये जो बात है ना कि ये जो हम लोगों की नज़रों में बड़ा हो जाएंगे तो कुछ होगा, अल्लाह की कसम शैतान से ज़्यादा कौन जानता है, शैतान से ज़्यादा कोई मशहूर है। इससे अगला टॉपिक भी यही आना है कि हमारे असलाफ जो थे ना वो अपनी शोहरत से बचते थे, उनको घबराहट होती थी और तारीफ कोई करे ना तो इरिटेशन होने लगती है। अब ये इससे मुझे ये समझ आ रही है कि जब भी कहीं जाएं तारीफ को छोड़ें, जिस काम पे हैं वो काम कीजिए और अगले बंदे को उसके ऊपर लगा दें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। बाद सालेहीन ने कहा कि अमल करने वाले को बकरियों के चरवाहे से सबक सीखना चाहिए। ज़रा सर गौर करें, अमल करने वाले को बकरियों के चरवाहे। अब एक एक लफ्ज़ पर गौर करेंगे ना तो आपके जहन में तस्वीर बनती जाएगी जो लफ्ज़ मैं बोल रही हूँ उनकी। पूछा गया वो किस तरह, जवाब दिया इस तरह कि जब वो चरवाहा बकरियों के पास नमाज पढ़ता है तो इन बकरियों से तारीफ तलब नहीं करता। इस तरह अमल करने वाले को चाहिए कि लोगों की निगाह को खातिर में ना लाए, खलवत व जलवत में यकसा अमल करे और लोगों से तौसीफ ना चाहे। क्या समझ आए? मुझे तो इसमें से एक ही बात समझ आती है कि लोग बकरी हैं, गूंगे बहरे। देखिए, मुंह भर के कोई आपकी तारीफ कर ले फिर क्या होगा? सच बताएं, आज दुनिया में मेरा लिए सबसे वर्स्ट ग्रुप जो होगा ना वो डेवल डिसेपर्स होंगे, शैतान के चीले। क्या उनके लीडरों की तारीफें नहीं होती होंगी? आपने दुनिया में हर फील्ड ऑफ वर्क है जो, उसमें मुख्तलिफ लोगों की तारीफें होती करती नहीं देखी? शायरों की तारीफें नहीं होती, क्रिकेटरों की नहीं होती, गुलकारों की नहीं होती, अदाकारों की नहीं होती? लोग तारीफें सुनने क्या दी हैं? तो अगर सबकी तारीफ होती तो कि मेरी हो गई तो मुझे क्या मिलना है? जब कोई तारीफ करता है ना उस वक्त ये सोचना चाहिए वो खुद काबिले तारीफ है, क्योंकि काबिले तारीफ बंदा आपकी तारीफ करे, आपका उस्ताद आपकी तारीफ कर दे वो सवा मन की है, और उसके मुकाबले में 40,000 लोग आपकी तारीफ कर रहे हो उसकी कोई कदर नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने आपकी तारीफ की है जो आपसे ज्यादा समझदार है, जिसके पास ज्यादा इल्म है, जिसने, अब आप देखें ना कि एक तारीफ, इसको ऐसे समझे कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट ही एक दूसरे की तारीफें करते हैं, इसको ग्रामर बड़ी आती है, इसको बड़ी आती है। अब वो जो तारीफ कर रहे हैं उसको खुद पता नहीं आती है कि नहीं, लेकिन अगर 40 लोगों में उस्ताद एक जुमला बोल दे कि अगर आपको हेल्प लेनी हो तो इनसे ले लें क्योंकि इनकी ग्रामर बड़ी अच्छी है, तो उसका मोल ज़्यादा है ना। तो तारीफों से परहेज़ करना चाहिए। लोग यकीन करें हवा भर देते हैं, और आज लोगों ने बड़ों के दिमागों में हवा भरी है। अल्लाह अगर हमारे दिमाग में कहीं है तो उसको निकाल के पीछे करते हैं। इतनी घबराहट होनी चाहिए अपनी तारीफ सुन के। और आप याद रखें कि इसमें ज़रूरी नहीं कि तारीफ तब हो जब आप कोई इल्मी काम करें, मतलब पढ़ा रहे हैं या आप तजवीद करा रहे हैं या आपकी किरत बड़ी प्यारी है या आप का एक्सेंट बड़ा प्यारा या आपकी स्पीच बड़ी प्यारी है। मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ जिस दर्स के बाद लोग तारीफ करें आके मुझे उस पर गुस्सा आता है, वल्लाह ही गुस्सा आता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशी इस पे होती है जब कोई कहता है कि आपकी बात दिल में उतरी, आपकी बात से दिल चेंज हुआ, तब्दीली आई, बहुत सुनते थे ये था। और अक्सर लोग एक जुमला बहुत बोलते हैं, आप कहाँ से पढ़ती हैं, हम सुनते हैं लेकिन हमें ये और वो। तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं आप लोगों से सीखती हूँ, मैं वल्लाह ही, मुझे जो ट्रैवलिंग से मिलता है वो मुझे आप एक कमरे में 100 किताबों के साथ बिठा दें तो वो नहीं मिलेगा। लोगों से बंदा बहुत कुछ सीखता है। तो इसमें हाईलाइट ये बात कर लें कि खलवत और जलवत, अकेले और सब के बीच में एक जैसे अमल करें। आप स्कूल की सफाई कर रहे हैं, कोई कहता है बाजी आप बड़ी अच्छी सफाई करती हैं, आप अकेले में कोई नहीं है कहने वाला, फिर भी वैसे ही होगी। आप खाना पकाते हैं, लोग कहते हैं आप खाना बड़ा अच्छा बनाती हैं, नहीं जब कोई ना कि फिर भी अच्छा बनाती हूँ कि नहीं। अभी आने से एक दिन पहले मैंने एक दर्स किया है कहीं इस्लाहुल कल्ब, बहुत ही उसकी डिमांड है, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से अभी तक तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिली, वो वेस्ट हो गई थी। उसमें इखलास पे बात हुई थी, इखलास ही टेस्ट डालता है। और वो कब आता है? जब अमल से रिया निकल जाती है। हर चीज़ का खुलासा ये है कि लिल्लाहियत, फिर आपको किसी के होने से किसी के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के देखने से किसी के ना देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये वक्त आ जाए ना तो फिर खुश हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ये तेरे लिए। तो अकेले में नमाज़ पढ़ रहे थे तो ढीली ढाली थी और पता चला पीछे से कोई देख रहा है तो एकदम सीधे हो गए, तो फिर उस नमाज को दोहराएं। जुन्नून मिस्री रहमहुल्ला से पूछा गया, इंसान को कैसे पता चले कि वो अल्लाह का चुनीदा है? चुनीदा क्या? चुना हुआ, चोजन। हम में से हर एक की ख्वाहिश होती है ना कि हम अल्लाह के चुने हुए हों। मेरी तो बड़ी है, आपकी भी होगी, होनी चाहिए। दुनिया ले हमें जितना मर्जी चुन ले, फिर क्या वो दुनिया वाले हैं? तो उन्होंने कहा चार बातों से। अल्लाह अकबर, इतनी खूबसूरत बातें। आप अपने आप से पूछें कि आपकी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह आपको चुने? और कई लोग इस बात पे आप पे रश करते होंगे कि अल्लाह ने आपको चुना हुआ है। जब लोग देखते हैं ना कि ये सब कुछ बंदा किसी कोशिश से नहीं हासिल करता, तो आखिर में लोग क्या कह देते हैं, नहीं असल में अल्लाह ने आपको खुद ही चुन लिया, अल्लाह ने ही आप पे पर कोई रहम किया हुआ है, और इसमें कोई झूठ नहीं है। हम अपनी कोशिशों से वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते जो अल्लाह के चुने जाने से कर सकते हैं। तो किसी ने पूछ लिया कि कैसे पता चले कि अल्लाह का चुना हो, तो कहने लगे चार बातें। पहली बात, जब राहत को तर्क करते हैं। सोचो ज़रा, राहत को तर्क किए बगैर अल्लाह का चुनाव नहीं होता। मसलन ये राहत कौन तर्क करता है? जो आधी रात को बिस्तर छोड़ता है, फिर ही क्या मुल्ला ही लेना। और रात राहत छोड़ी तो घर से निकले ना, बिस्तर पे सो रहे हैं, उसने क्या करना है? मुझे बताइए, जो अपने जिस्म को ही करे, एक बुक लेके बैठी हुई हूँ, इंशाल्लाह किसी दिन आपको ये भी पढ़ानी है, मुसलमानों का ताल्लुक अपने नफ्स के साथ। मैं पढ़ती हूँ, मैंने पढ़ी है, तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो हर एक को पढ़नी चाहिए। इतनी 15-20 किताबें लेके बैठी हुई हूँ कि हम सब कहाँ जा रहे हैं। हमें तो उस खजाने की, शायद खजाने की चाबी मिल गई है, अभी असल खजाना तो हमने ढूंढना है। फिर इसके बाद कोई हीरों को छोड़कर मोतियों का तलबगार हो तो ये फिर उसका अपना नसीब है। वाकई अल्लाह उसको चुन लेता है जो अल्लाह की किताब के साथ लग जाता है, मान ले चल लग जाता है। और अल्लाह की किताब लगने के बाद राहत को छोड़ना ही पड़ता है, और अगर नफ्स ना छोड़े, खाना ना छोड़े और राहत ना हो तो क्या होगा? तो ज़रूरत है कि हम सब अपना एक बार फिर रिवाइवल करें। बाज़ हम सोचें ना, हम बीमार हैं तो उसकी वजह ये होती है कि हम बड़ी राहत पसंद हो गए हैं, चूँकि जिस्म को इतना जो आराम तलब किया, तो फिर ज़रा सी 19-20 हुई तो फिर गए, फिर परेशान हो जाता है इंसान। और अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। दूसरी चीज़ कहते हैं, बेहतरीन चीज़ अल्लाह की राह में दे। हम सॉर्ट आउट करते हैं, क्या निकालते हैं, हर एक सोच ले। अब देखिए, चुने जानों की बातें, इसमें कोई जन्नत जहन्नम की बात नहीं है। हम ऐसे बंदे को कहते हैं चुना हुआ, हम कहते हैं बेवकूफ़, लो सबसे अच्छी चीज़ निकाल के दे दी। बस आप देखिए कि किसी के पास ज़मीन के चार टुकड़े हों, सबसे अच्छा टुकड़ा अपने भाई को दे दे, अपनी बहन को दे दे, तो हम कहें बुद्धू ही था, देखो दूसरा कितना समझदार था, वो ये ले गया वो ले गया। नहीं, तीसरी चीज़, दुनियावी कदरों मंजिलत में कमी चाहे। समझ आइए कि लोग ना मेरी इतनी कदर करें, लोग मुझे इतने, मंजिलत भी समझते ना, मंजिल ऊपर, यानी इंसान को इज्जत मिल जाए, थोड़ी सी बात हो जाए। और चौथी बात जो हमारे इस मौजू से मुतल्लिक है, लोगों की मदह और मजम्मत इसके नज़दीक यकसां हो जाए। करते हो तो करो, नहीं करते तो ना करो। अच्छा, एक होता है कोई तारीफ करे और या ना करे, एक यही हुई ना बात, ये तो हो सकता है बराबर हो जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ बात कुछ और है। अगर आपने जुमला लिखा है तो तारीफ कर लो या गालियाँ दे दो, बुराइयाँ कर लो, ये दोनों बराबर है, ये बड़ा मुश्किल मौका है। मदह कोई करे ना करे, हम कहते इट्स ओके, ना करो, चलो जी तुम हो ही ना कदरे, तुम्हें, तुमने हमारी तारीफ ही नहीं की तो ना करो, पर तारीफ की उम्मीद हो और लोग आपकी बेतनकीद करने लग जाए। आप लोगों से कोई दाद वसूल करने वाले थे और लोग जो हैं वो आपके ऊपर कोई बुरे इल्ज़ाम लगाने लग जाएं। ये चार चीज़ें हैं चुने जाने की, दोहरा ले, राहत को तर्क करना, बेहतरीन चीज़ को अल्लाह की राह में देना, दुनियावी कदरों मंजिलत में कमी चाहना, और मदह और मजम्मत से लोगों की बेनियाज हो जाना, ये बराबर हो जाए। अच्छा, अब ये तो है चुने जाने वाले की बात, तो अगली बात किसकी है? रियाकार की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रियाकार की चार अलामतें हैं। पहले आप देखिए, रियाकार कौन होता है? रिया किसको कहते हैं? देखना, रोयत, रा, हाँ? और कार कौन है? काम करने वाला। रियाकार है जो दिखाने पे काम कर रहा है, उसकी पूरी कोशिश है कि दूसरे लोग मेरी, मेरे इस काम को देख लें। अब इसकी चार अलामतें लिखिए। नंबर एक, जब अकेला हो तो सुस्ती का मुजाहरा करें, बिस्तर ही नहीं छोड़ रहा, चाय का कप भी नहीं खत्म होता, हमारा तो एक चाय का कप 1 घंटा लेता है हमारा। फिर दूसरा, जब लोगों के हमराह हो तो बड़ी चुस्ती दिखाए, फिर ऐसे लगता है कि इनसे ज्यादा कोई एक्टिव ही नहीं है। तीसरी बात, जब तारीफ हो तो अमल ज्यादा करे, और चौथी, जब मुजम्मत हो तो अमल में कमी कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हर एक अपने आप को देखे, दूसरे किसी को तो देख भी नहीं सकते हम, ये सारी बातें बंदे के अपने अंदर होती हैं। कुछ चीज़ें हमारी जो होती हैं ना, दूसरों को दिखती हैं, फिर वो रिया नहीं होती, वो फिस्क बन जाता है, लेकिन जो चीज़ें हमें खुद को दिखें उस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। मुहासबा कर लेते हैं, क्या मैं अकेले ही जब होती हूँ तो सुस्त होती हूँ? जब मैं लोगों के चार लोगों में हूँ, कोई मेरे घर ही आ जाए या मैं कहीं चली जाऊँ या दूसरे मेरे उस अमल को देख रहे हो तो मैं बहुत चुस्त हो जाती हूँ। जब कोई मेरी तारीफ़ करता है तो फिर मैं खुश होकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हूँ। लोग क्या कहते हैं, इनक्रेज करो जी, इनक्रेजमेंट ना हो फिर बंदा काम नहीं करता। और मजम्मत क्या, वो उसे में डिस्करेज ही बड़ा करते हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं तो अमल छोड़ दिया, मजम्मत में अमल में कमी। तो क्या पता चला, सारी बात का खुलासा यही है कि अपने लिए जब करेंगे तो फिर किसी की बात की परवाह नहीं होगी। फुजैल बिन इयास रहमहुल्लाह कहते हैं, इल्म की आफत भूल जाना और इज्जत की आफत उजब है। इल्म की आफत से क्या मतलब, हर चीज़ की एक आफत होती है ना, जैसे फसलों पे मतलब फसल में क्या कहते हैं, अनाज लगा है तो उसकी आफत क्या है, कीड़ा पड़ जाएगा, सुसरी हो जाएगी। आम केरियाँ लगी तो आंधी चल गई तो आफत आ गई ना। हर चीज़ की आफत होती है, हम सेहतमंद है आफत जो है कि कोई बीमारी आ जाती है। इल्म की आफत क्या है, भूल। चलें खुद से पूछें, भूलती तो नहीं हो, भूल लाहक तो नहीं है, पिछला सबक भूल तो नहीं रही, क्या कुछ पढ़ा सीखा लिखा क्या सारा याद है, तर्जुमा पक्का है? और अगर आप ये सफ़र शुरू हो रहा है तो इसको आज से बल्ले से भर लें कि एक दफ़ा एक चीज़ ज़िंदगी में आ जाए फिर उसको कभी निकलना नहीं है इंशाअल्लाह ताला। और ये इज्जत की आफत हो जब क्या है, इज्जत तो आप समझते हैं ना, इज्जत आफत भी समझ गए। उजब क्या है, खुद को अच्छा समझ, खुद पसंदी, यानी जब बंदे में खुद पसंदी आ जाती है ना तो उसकी इज्जत ख़त्म होती है। आप अपने ख़ानदान या अपने मिलने वालों का कोई किरदार ऐसा देखें, सबके होंगे, जब कोई उनके पास आके बैठे तारीफ़ है, पहले अपनी करते थे, फिर थोड़े अरसे बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो अपने बच्चों की और अब पोतों की पोतियों की नवासों की, यानी उनका एक ही शुगल है कि दुनिया में बेहतरीन घराना मेरा घराना है। एक खास हद तक तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन वो जो दूसरा करे, दूसरा कहे ना कि बाजी आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं, तो अगर बाजी ही बैठ के हर आने और जाने को अपने बच्चों की तारीफें करे तो अगला इरीटेट होगा कि ये क्या बात है। हमेशा तारीफ वो जो दूसरा करे। फिर अरबी का मकोला है, यानी एक जुमला है अरबी जुबान का, अल उजुबू यहदुमुल महासिन। दोहराएंगे, अल उजुबू यहदुमुल महासिन, खुद पसंदी महासिन, महासिन होती खूबियाँ, खुद पसंदी महासिन को ढा देती है। जो हुसन होता है ना अंदर, जो थोड़ी बहुत खूबियाँ होती हैं वो भी खुद पसंद बंदे की ख़त्म हो जाती हैं। और एक और जुमला भी है क्या, अल आजाब आफतुल बाब, खुद पसंदी अक्लों के लिए आफत है। खुलासा क्या है, खुद पसंद नहीं बनना। देखिए जो खुद पसंद हुआ ना फिर वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, वो तो पहले ही बड़ा अच्छा हो गया तो उसके बाद उसको किसी और चीज़ की परवाह भी नहीं है। इस आईने में आप ज़रा अपना जायज़ा लें तो पता चलेगा अपनी तारीफ सुनने का मरज़ आज हर आलिम के अंदर मौजूद है। इस मरज़ का कला कमा होना चाहिए कि ये नेकियों को खा जाता है और कुछ ना होने के बावजूद इंसान के अंदर बड़ाई का बुत नस्ब कर दिया जाता है। क्या पता चला, अंदर मौजूद होता है, अब इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। और जब इंसान दूसरों से अपनी तारीफ़ें सुनने के शौक़ में रहता है ना तो उसके अंदर बड़ाई का एक बुत नस्ब हो जाता है। तो क्या सीखा आपने, तारीफ़ से गुरेज करना है। कोई सवाल, कोई बात है इससे मुतल्लिक, कोई क्वेश्चन सुनने में जो बात आया उससे आया हो तो जी आप नसरीन।
उस्ताद जी, अगर बढ़ाई तो चले समझ आती है कि आ जाए इल्म से या कोई भी किसी भी खूबी से, लेकिन अगर दिल में ये आता रहे कमी ही का आए कि कमी है और अपने आप को कमतर समझे, वो भी नहीं थी
मतलब अपना कॉन्फिडेंस लूज होता दिखे कि हम कुछ नहीं कर
कॉन्फिडेंस
सकते।
रहे लेकिन ऐसे लगे कि जैसे नहीं वो
देखिए अगर तो
मेरे
दिल में
लेवल
ये
नहीं
आता है ना
होना
कि मैं जो
चाहिए।
काम करती हूँ सही नहीं करती,
हाँ जी
तो बस साथ साथ कोशिश करते रहिए, तो अच्छी बात है। अपने किसी काम से अगर आप मुतमईन हो गए हैं तो गलत है। दूसरी बात है कि दूसरों से पूछ लेना चाहिए, ऐसा अगर फीलिंग आए ना फिर दूसरों से पूछ लेना चाहिए, या किसी अपने जैसे अपने फील्ड के बंदे को कहना चाहिए कि तुम मुझे देखो जो मैं कर रही हूँ, जो करवा रही हूँ, जो पढ़ रही हूँ पढ़ा रही हूँ वो ठीक है, अपने उस्तादों के सामने अपने आप को पेश कर देना चाहिए कि आप हमारी खराबियां निकालें। जैसे एक जगह पे हम थे तो वो जो ग्रुप लीडर्स होते थे ना, उनको कहते थे कि दो ग्रुप लीडर एक दूसरे को नोट किया करें। पर मसला ये कि जिसको मुसल्लत किया जा रहा है उसको भी तो समझ आती हो, जहाँ पता ही किसी को कुछ ना लगे तो वो तो कहेंगे तुम बहुत अच्छे हो। जो बंदा बहुत क्रिटिकल हो ना, और याद रखे हर जगह क्रिटिकल लोग होते हैं और लोग उनसे तंग होते हैं, ये हमारी हर बुराई दिखाते हैं और हम चिढ़ते हैं, इनको क्या पता हमारी मसले। आप अपने इर्द गिर्द किसी क्रिटिकल बंदे को देखते हैं तो उसको कहें कि तुम मेरे ऊपर नज़र रखो और अपनी बेहतरी की उम्मीद रखें। जब आप आगे मजीद लेना नहीं छोड़ते ना, एक वक्त आता है कि आप इंशाल्लाह फिर आगे से आगे जाते हैं। और कोई अगला भी ना इससे मिलता ही है, इसको साथ ही पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें तारीफ थी उसमें शोहरत है। टॉपिक है उलमा का शोहरत से गुरेज करना, पेज 72, इल्मे नाफे और हमारे असलाफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से परागंदा बालों वाले, परागंदा क्या होते हैं, बिखरे हुए, और ख़ासतौर पर सफ़र में ये कैफियत होती है, गुबार आलूद जिस्म और बुसीदा कपड़े पहने हुए ऐसे लोग हैं कि जिनकी कोई परवाह नहीं करता, मतलब देखने में उनमें कोई टीप टॉप नहीं है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इनका ये मर्तबा है कि अगर वो अल्लाह पर कोई कसम उठा लें तो अल्लाह ताला ज़रूर इनकी कसम को पूरा करेगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 2682 नंबर की। कितनी बड़ी बात है, और ये हदीस आपने पहले भी सुनी होगी, कदर ही नहीं। लोग बड़े लोगों को बुलाते हैं दावतों में, शादियों में, रिश्ते करते हैं, वाह जी वाह ये बड़ा है, तो कुछ बेचारे ऐसे सीधे भुलक्कड़ लोग कहते हैं इनका क्या है, इनको बुलाया ना बुलाया एक बराबर है, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनकी कितनी कदर है। और आप देखें ये सबसे ऊंचा मुकाम है, अल्लाह कसम पूरी कर दे। एक तो ये ना कि हर बंदे को अल्लाह की माननी है, दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह इनकी मानने लगता है। और फरमाया इन अल्लाह युहिब्बुल अब्द तकील गनील खफीज, इन अल्लाह बेशक अल्लाह युहिब्बुल अब्द तकी, पसंद करता है या मोहब्बत करता है अपने उस बंदे से जो अत्तकी अलगनी और अलखफी। तीन बातें हैं, नंबर एक मुत्तकी हो, दूसरी बात गनी हो बेपरवाह, केयरफुली, उसको इस चीज़ की परवाह ही कोई नहीं कि लोग मुझे अच्छा या कहें अच्छा कहें, और तीसरी बात खफी, छुप के रहने वाला, पोशीदा, बैक एंड पे काम करने वाला, अपने नाम कामों के नीचे अपनी हेडिंग्स नहीं लिखता, अपने नाम नहीं लिखता, ये मैंने किया, कानों में नहीं बताता आज का खाना मैंने पकाया था, ये चीज़ मैं लेके आई हूँ, ये नहीं होता उसमें। अल्लाह को ऐसा पसंद है, और हम चाहते हैं ना कि अल्लाह हमें पसंद करे, कोई भी नहीं ऐसा होगा जो ये ना सोचे कि जी अल्लाह ताला हमें पसंद करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया हमें पसंद ना करे इट्स ओके, बट अल्लाह तो पसंद करे, और जिसने हमें पैदा किया, और आप देखें मैं इसको भी सोचती हूँ, पैदा भी अल्लाह ने किया, अगर हमारे अंदर कोई खूबी है तो अल्लाह ने डाली है ना, तो अगर अल्लाह सुबहान तआला वो खूबी दे के फिर हमारी तारीफ भी खुद करे, सोने पे सुहागा है, अल्लाह हमें ऐसा बना दे। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक दिन अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु अपने घर से निकले तो कुछ लोग पीछे हो लिए। इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने इनसे दरियाफ्त किया, तुम किस बिना पर मेरे पीछे चल रहे हो? अल्लाह की कसम, अगर तुम जान लो कि मैं किस चीज़ पर अपना दरवाज़ा बंद करता हूँ, यानी मेरी खलवत से आगाह हो जाओ, तो तुम में से दो आदमी भी मेरे पीछे चलना गवारा ना करें। क्या नऊज़ुबिल्लाह, इब्ने मसूद तन्हाई में फोहश फिल्में देखते थे, गंदे सीन देखते थे, गाने सुनते थे, नहीं, ये उनका तकवा था। देखिए ना हर बंदा जब अकेला होता है ना थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर होता है, आप भी होते होंगे, बंदा दुपट्टा उतार के बैठ जाता है, दूसरों की मौजूदगी में एक थोड़ा सा अनकम्फर्टेबलनेस जो फील कर रहा होता है वो उससे बाहर आ जाता है, वो इसको भी गुनाह समझ रहे होते थे। और असल बात ये नहीं थी कि मैं तन्हाई में क्या करता हूँ, असल बात ये थी कि मेरे जाहिर पे तुम इतना ना मेरे पीछे रिझो। बिशर रहमहुल्लाह कहते हैं, मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता जिसने शोहरत चाही हो और वो गुमराही और रुसवाई का शिकार ना हुआ हो। ऐसा शख्स आखरत की मिठास नहीं पा सकता जो शोहरत का तलबगार है। देखिए आप इसमें कुछ शख्सियात को सोचिए, नेशनल लेवल पे, फिर इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे, कुछ ना कुछ ऐसे किरदार आपको ज़रूर नज़र आएंगे अपने गुन गाते हुए, आखिर में अल्लाह उनका अंजाम बुरा करता है, हमेशा अल्लाह से ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमारा आखिरी इंजाम अच्छा हो। वाकई मैं इस तलब तड़प को महसूस करती हूँ सहाबा की जो होती थी, क्यों परेशान रहते थे इस बात से कि आज तो अच्छे हैं कल पता नहीं क्या होगा। और ये बात आपको मुझे हमें हर एक को ज़रूर अपने दिल में रखनी चाहिए, मेरा एंड क्या होगा। आज लोग मुझे कुरान के नाम से जानते हैं, आज मैं दीन सीखती हूँ, आज मैं दीन की खिदमत करती हूँ, आज मैं दीन सिखाती हूँ, ठीक है ये सारा कुछ बड़ा अच्छा है, कल क्या होगा। और याद रखिए अल्लाह बंदे की असल खोल के रहता है। इतनी ख़तरनाक बात है ये, इतनी ख़तरनाक बात है कि हदीस आपने सुनी होगी कि जब बंदा कोई अंदर गुनाह कर रहा है और बाहर बाहर ऐसा खुला है तो अल्लाह उसको घर में रुसवा कर देगा, अपने लोग आपको बुरा कहना शुरू हो जाएंगे। तो ये डर हर वक्त दिल में रहना चाहिए कि अल्लाह हमारे जाहिर और बातिन में फ़र्क ना आ जाए, खोट ना। और आप देखिए जब हम शुरू में दीन में आते हैं ना, वैसे हमने नया नया दीन का काम शुरू किया तो लोग हमें नहीं जानते, हमारे अंदर बड़े जज्बे होते हैं, बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, ये कर देंगे वो हो जाएगा, करके देखे अल्लाह होने दीजिए, ये कीजिए वो हो गया, बंदा ढीला हो जाता, बच्चा ही नहीं है शादी के बाद 2-3 साल गुजर गए, हाय बच्चा हो जाए मैं ये कर दूंगी, बच्चा हो जाए ये कर दूंगी, ये है वो है, बच्चा हो जाता है फिर इंसान भूल ही जाता है कि कभी नहीं था। मुझे एक ऐसी खातून याद है, उनके बेटियां थी बेटा नहीं था, जब शादी के कुछ साल के बाद तो वो किसी को देखती, किसी के गई अपने बहन भाइयों में तो उनके बच्चे थे बेटे थे तो बड़े दुबले से थे या कुछ जो भी उनको लगा था, कहती हैं मेरा बेटा हो ना तो मैं तो उसको इतना अच्छा पालू, वो इतना मोटा ताज़ा होगा। अल्लाह ने फिर उनको बेटे भी दिए, आज भी कांगड़ी पिलवाना है कोई माँ नहीं खिला सकती, यकीन करें। लेकिन जो बात इसमें है ना, जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है ना, हम ठंडे हो जाते हैं, हम ढीले हो जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ट्रेन का एक पहला डब्बा होता है और एक आखिरी होता है। पहला डब्बा वो है कि जिसके आगे सिर्फ पटरी है उस पर चलना है, आखिरी डब्बे वाले के पास कोई 20-25 डब्बों के नक्शे कदम होते हैं। लेकिन आप देखिए कि पहला उतर जाए तो पिछले बेकार हो जाते हैं। मैं अपनी ये सारी ट्रैवलिंग में और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसमें देखती हूँ ना, तो मुझे शायद इसलिए बहुत कुछ अलग नज़र आना शुरू हो जाता है। यानी ये अभी आपके पास मैं तकरीबन 2 से 2 महीने और मेरे हाल 1 वीक ऊपर आया है, 2 महीने, और रात को घर आ रही थी और जब रास्ते में और इधर, तो मैं जो मेरे साथी थी मेरे पास रात को, मैं उनको कह रही थी मुझे लग रहा है मैं कम अज़ कम 6 महीने या 1 साल के बाद आई हूँ। मैं आंख बंद करती हूँ, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है और मैं नॉर्वे की ठंडक और बर्फ़ और इसको देख के क्यास करूँ कि इधर मैं होती या अगर जो आप इधर थे तो घर से स्कूल या स्कूल से घर या दो, वही एक डगर थी। यानी मैं सोचती हूँ अगर मैं ना जाती इस 2 महीने बाहर, यहाँ तो जो चलना था वो चल ही रहा था, लेकिन मुझे जो अल्लाह ने तजुर्बे और एक्सपीरियंस मेरा लिए, अगर मेरे साथ कोई लगा देता कोई वो टाइम क्या होता है नेविगेटर जिसमें माइलें देखे, तो हज़ारों 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 मील सफ़र किया, शायद ही पाकिस्तान का मतलब जो आम जगह उनके इर्द गिर्द कहीं ना गई हो। और चले वो तो बंदा जाता ही है, पर सुबह कहीं, रात कहीं, दिन कहीं, एक दिन के लिए कुछ जाके वापस आ जाए कराची से, लोग कहते हैं ये तो बेवकूफ़ी है, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बैक एंड फोर्थ रहा, हर वीक दिन ही बंद गए थे, कुछ दिन हर वीक एक ही शहर के हैं तो फिर ज़ारा हर वीक उधर जाना ही पड़ता था ना। तो मैं ये सोच रही थी कि कितना अच्छा फैसला था जो अल्लाह ने किया मेरे हक में। यहाँ होती तो मैंने सिर्फ बर्फ़ इंजॉय करनी थी और मेरे पास ये तजुर्बात नहीं होने थे। अब चूंकि इतना कुछ है तो मुझे यकीन नहीं आ रहा ये 2 माह में सिमट ही नहीं सकता, और 7 हज करके आ जाओ वो फीलिंग ये बंदे को नहीं आती जो मुझे इस वक्त आ रही है इस सोच में कि बहुत कुछ है दिल में और शेयर करने को देखा है। और उसमें ये चीज़ मैंने देखी है, नई जगह भी देखी है जहाँ लोग कहते हैं काम शुरू करें, वो भी देखी है जहाँ हम खुद चल रहे हैं। आप सबको होता है सियालकोट का इदारा, मैंने इस सियालकोट के इस 2 महीने के उस इदारे के सफ़र से मैंने आपके बारे में और उनको जो रिलेट करके देखा है मैं आपको अपने लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। एक तो फिज़िकल चीज़ है और एक बंदा तैयार करना पड़ रहा है और एक एक कुर्सी कहाँ से लेनी है और एक एक बोर्ड देखना पड़ रहा है। यही चीज़ें पिछले साल पेरिस में देखी थी जब वहाँ काम शुरू हुआ। तो आपको तो सिर्फ अपना स्कूल दिखता है ना, लेकिन मुझे दूसरी भी जगह दिखती हैं और फिर जो तलब और जो मुश्किलें आती हैं रास्ते में, तो मुझे तो लगता है आप तो नेमतों में भरे बैठे लोग हैं, आप में तो वो जो मांग रहे हैं वो सब आपके पास है। और जो आपके पास है तो फिर आप में और उनमें ये नहीं मुझे फ़र्क क्या दिखना चाहिए, ये नहीं मैं हर वक्त ना चाहते हुए भी एक गैर महसूस तरीके से ये देख रही होती हूँ कि जब शुरू के दिन होते हैं कितनी मुश्किलें होती हैं, और यही छोटे छोटे काम है जिससे अल्लाह ने शायद हमें जन्नत देनी है। हर नेकी जो है मुझे ऐसे फील होती है कि ये है वो जिसपे मेरी जन्नत जहन्नम है, मैं अराफ पे खड़ी हूँ, एक नेकी कम है और इसने आके मुझे बचाना है, तभी भी नेकी होती है। याद रखे नेकी होती तब है, और मैंने वो भी लोग देखे हैं कि नेकी घर में पड़ी है तो परवाह नहीं, और 100 मील दूर से आके बंदा नेकी ले गया। ये चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं, ख़ास तौर पे मैंने जो मेरा पूरा माइंड चलता है कि नेकी के मौक़ों को हम किस नज़र से देखते हैं। कई उसको मजबूरी समझ लेता है, कोई उसको ऑनर समझता है, कोई उसको इज्जत समझता है, कोई लाइबिलिटी समझ लेता है, किसी को वो बोझ लग रही होती है, किसी को वो बहुत ही हल्की लग रही होती है। तो ये इंसानों की किताब पढ़ने से इंसान को बहुत फ़ायदा होता है। फिर इसी तरह से हज़रत अली का एक कौल है, इसमें लिखा हुआ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सादगी अपनाओ, शोहरत से बचो, अपनी शख्सियत को ऊंचा ना करो कि तुम्हारा चर्चा हो, यानी इसलिए ना शोहर शख्सियत को ऊंचे करते फिरो कि लोग तुम्हें देखें सोचें करें, बल्कि इल्म हासिल करो, छुप कर रहो, इस तरह तुम सलामत रहोगे, नेक लोग तुमसे खुश होंगे और फासिको फाजिर दबे रहेंगे। क्या निकला? सादगी अपनाओ। इसमें एक हमने लेक्चर भी रखा था जिंदगी को आसान बने, बल्कि ये वही था जहाँ बहुत बड़ा क्राउड आया, जिंदगी को सादा करें, आसानियों के मतलाशी रहे। काफी दिन पाकिस्तान रही ना, बड़े बड़े घर देखे, आपको भी पता ही है जहाँ मैं रहती हूँ, आप भी तो आपके भी तो रिश्तेदार कमोबेश वैसे ही होंगे। मैं जिस लोगों में रहती हूँ उनके घर इतने भरे हुए हैं कि बंदे जितने उससे ज़्यादा चीज़ें, किचन है तो भरे पड़े हैं, फ्रिज है तो लुढ़की पुड़की है। कल रात मैंने आकर जब अपना, ज़ाहिर बंदा सारे घर को देखता है, तो जब मैंने अपना किचन खोला, एक एक ड्रॉ खोली, अभी मैंने आने से पहले सोचा था मैं उसको शेयर करूँगी कुछ लोगों के साथ, यकीन करें मुझे अपना घर ऐसे लग रहा है शीशे का है, चांदी का घर है मेरा, इतने भरे भरे घर, अलमारियां भरी, हर चीज की कसरत है। कसरत हमारे पास भी सब कुछ है पर फजूल नहीं है। तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि ये है चीजें जिन्होंने हमें रोने रुका हुआ, पढ़ने पढ़ाने से, किसी की खिदमत करने से, किसी की तीमारदारी करने से। और सच्ची है, हम ये नहीं कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन वाकई देखे ना, किसी के पास थोड़ी चीज है तो उसको थोड़ा वक्त चाहिए देखने को, और जिसके पास चीजें ही बहुत है। और हमारे कल्चर में आदत है कि नई लेनी नहीं छोड़नी तो पिछली फेंकनी कोई नहीं। इस ट्रिप में एक सिस्टर मिली किसी जगह, हम गए, डॉक्टर हैं वो, तो मुझे पहले कहीं बाहर मिली, फिर अगले दिन उन्होंने अपने घर में लंच भी रखा हुआ था, तो हमें बुलाया, कहती है अब लोग खुद जो बातें मैं बोलती हूँ अब मुझे यकीन हो गया लोग सुनते हैं। एक वक्त आता है बंदे को पता ही नहीं होता कोई सुनता है, क्योंकि वो दोहराते हैं ना, सबको पता है मुझे क्या पसंद है और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। तो मेरे कान में आके कहती हैं आपका वो फलां लेक्चर मैंने सुना था जिसमें आपने अपने किचन का जिक्र किया था, तो मैंने भी फिर निकाला और फिर गिना रही थी, कहती आपको पता मेरे घर के किचन से, डॉक्टर थी तो उनकी ना मीटिंग्स होती हैं बड़े बड़े, तो बंदा इसलिए भी चीज़ें जमा करता रहता है कि बड़ी दावत हुई तो 50 प्लेटें एक जैसी, तो मुझे मैं गलत ना बोल दूँ, मुझे पहले एक दिन सुना गई कि मैंने जनाब, वो थी भी ज़रा भंगी सी थी यानी चुलबुली सी थी, तो कहती पता नहीं शायद 25 फ्लास्क ये नहीं होते थर्मस चाय के मेरे किचन में से निकले, इतने निकले, ये निकले वो निकले। तो फिर कान में मुझे कहती हैं कल आपने आना है ना, तो वो जो मेरे घर में अब एक ही, मैंने एक नया बिल्कुल नया था जो ना क्या होता है अपना डिनर सेट वो रखा हुआ है, तो मैंने वो निकालना है। तो मैंने कहा कि अच्छा फिर उसमें बाद में दूसरे घर वालों को भी खाने की इजाज़त होगी। फिर मैं अगले दिन जब गए हम उनके घर, तो डाइनिंग टेबल पे उन्होंने खाना लगाया हुआ था, पीछे आपको कहते हैं ना पाकिस्तान में अलमारियाँ होती हैं ना बर्तनों वाली, वो होती, तो मुझे कहती देखें मेरी अलमारी खाली क्यों, कि उसमें अब यही डिनर था तो मैंने निकाल दिया। अब मुझे देखना खुशी क्या हो रही है, अब ये वो आप मेरे सिखाए हुए कमल पे अगर उसने ज़िंदगी आसान की है तो मुझे खुशी हुई ना, तो अगर इसकी जगह वो मेरे ही गुण गाती रहती तो मुझे क्या मिलना था। तो मैं अपनी कभी भी कोई चीज़ शेयर भी करूँ ना अपने घर की अपनी, तो मेरी यही नीयत होती कि इसका मतलब कि लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन यकीन करें कि ज़िंदगी को आसान करेंगे ना तो फिर जाने की तैयारी होगी, वही बात है कि जीने वालों को जाने की तैयारी करनी है। फिर कहते हैं कि अबू हाजिम कहते हैं कि अपनी नेकियां इस तरह छुपाओ जिस तरह अपने गुनाह छुपाते हो। मजीद कहा कि मैं नसीहत करता हूँ लेकिन मुझे नसीहत की कोई हकीकी जगह नज़र नहीं आती। अलबत्ता मैं सिर्फ अपने आप से इरादा करता हूँ, यानी वो बात दूसरों से कहकर अपने आप को नसीहत करने का इरादा करता हूँ। फोकस किया आपने इस पे? नेकी ऐसे छुपाओ जैसे गुनाह छुपाते हो, और हमारे सलाफ ऐसे ही थे, नेकियां छुपाते थे क्योंकि नेकियां बंदे को उजब का शिकार कर देती हैं। फिर नसीहत दूसरों को ना करें, यानी आखिरी जुमले का मतलब क्या है कि नसीहत किसी को करनी है ना तो खुद को करें। दूसरों को करने से हो सकता है वो माने ना माने, लेकिन आप तो मानेंगे अपनी इंशाल्लाह। इमाम वज़ाई रहमहुल्लाह कहते हैं, याहिया बिन अबी कसीर रहमहुल्लाह को मैंने ये कहते सुना कि तुम्हारा अपनी नेकियों को याद करना और अपने गुनाहों को भूल जाना गफलत है। इसको लिखें आप, हाईलाइट करें, नेकियों को याद करना। हम भूलते हैं अपनी नेकियां, हमें अपनी दरअसल पुरानी नेकियां भी याद है। हाय मैंने ये हिजरत की थी, हाय मैंने ये कुर्बानी दी थी, वो मैंने अपना पसंद का जोड़ा अल्लाह के रास्ते में दे दिया था। और गुनाहों को भूल जाना, हमने तो भी कभी कोई गुनाह ही नहीं किया। अब काम गुनाह करते हैं, हालांकि दिन में 10 दफ़ा करते होंगे। कहते हैं ये दो काम, नेकियों को याद करना और गुनाहों को भूलना, गफलत है। अल्लाह हमें गफलत से बचाए। रबी बिन हैसम का अमल पोशीदा होता, अगर कोई आदमी आता तो अपने मुसहफ को कपड़े से ढांप देते, पता ही ना चले कि कुरान पढ़ रहे हैं। उस दौर में तो वो कुरान थे भी नहीं ना जो दूसरों को नजर ना आए। आज हमारे पास तो हाथ में भी कुरान हो तो किसी को नहीं पता चल सकता। मतलब ये था कि वो लोगों में अपने कुरान पढ़ने को जाहिर नहीं करते थे। इब्राहिम बिन अदम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, शोहरत पसंद आदमी अल्लाह के साथ सच्चा नहीं है। अल्लाह के साथ सच्चा होता तो शोहरत उसे जहर लगती। कितना सख्त मेयार है। अयूब सख्तियानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कसम अल्लाह की, कोई बंदा उस वक्त तक अल्लाह से सच्चा नहीं हो सकता जब तक इसे ये बात पसंद ना हो कि लोग इसकी कदरो मंजलत को पहचाने, यानी लोगों को इसके इल्म और मर्तबे का पता ना हो, और अगर कहीं पता चल जाए तो वो लोगों की परवाह ना करें। बात समझ गए? किस तरीके से मैं सोचती हूँ, आप देखिए कि ये सोचते कैसे थे। वो जैसे कहते हैं ना कि इतना अच्छा ख्याल भी कैसे आता है, वही बात है कि दिल अच्छा हो जाए, पीछे से अपना कनेक्शन अल्लाह से जोड़ ले, लिल्लाहियत आ जाएगी, ये सारा कुछ हमारे अंदर भी आ जाएगा। हमें भी लोग छोटे छोटे मोहरे ही लगेंगे, यकीन करें। चींटियाँ और ज़मीन पे चलते फिरते कीड़े मकोड़े, इनमें और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में हमें फ़र्क नहीं दिखेगा अगर अल्लाह की कुदरत के ख़जानों पे और अल्लाह की ताकत पे हमें यकीन आ जाए। इब्ने मसूद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इल्म के सर चश्मे और हिदायत के चिराग बनो। लिखें इस जुमले को, अपने लिए दुआ करें, ए अल्लाह मुझे इल्म का सर चश्मा बना दे और हिदायत का चिराग बनाओ। सर चश्मा क्या होता है? जहाँ से फूटती है चीज़, और चिराग जो दूसरों को रोशनी दिखाता है। घरों के टाट और रातों के रोशन सितारे बनकर रहो। घरों के टाट क्या मतलब? टाट सख्त चीज़ होती है ना, जूट, यानी सस्ती चीज़ की तरफ है कि घरों का टाट मुराद यही है कि सादगी,
नीचे लगे हुए
जी आजजी की कैफियत कह रहे हैं, और रातों के रोशन सितारे अंधेरी जिंदगियों में रोशनियां बखेरे। तुम्हारे कपड़े अगरचे बोसीदा हों, पुराने हों यानी, लेकिन दिल नए होने चाहिए। कपड़े पुराने, दिल नया। नया दिल क्या होता है? बदलवा ले, हर दिन दिल नया होना चाहिए। और आपको तो दिल नया कैसे होता है? जितनी अल्लाह की मोहब्बत आती जाती है ना, उतना दिल नया होता है। नए नए जज्बे, अल्लाह मैंने आज आपको फिर पहचान लिया, अल्लाह आज तो मुझे आपकी और भी आपका मुझे आज और भी पता लग गया। जैसे कभी कोई काम हो ना, कोई अनयूजुअल चीज़, तो लोग क्या कहते हैं, आपने पहली दफ़ा देखी है, मैंने तो अपने रब को पहले भी बड़ी दफ़ा देखा है। और यकीन करें, अल्लाह से ज़्यादा कदरदान कोई है नहीं। अब आप कहते लोग आपकी तारीफ़ करें, बस आप इस शहर में रहती हैं, लोग आपकी तारीफ़ करें, सारा शहर, ये ओस्लो की आबादी कितनी होगी मुझे नहीं पता, सारे शहर की ज़ुबान पे आपका नाम हो किसी भी वजह से, ठीक है। अब इसके बरक्स एक अल्लाह आपको अहमियत है, कौन सी बड़ी बात है। और आप तो यकीन करें, मैंने एक चीज़ सीखी है अपनी ज़िंदगी में किसी के अमल से, ये भी मैंने इस ट्रिप में ही सीखी है। कुछ लोग हैं ना, उनके अंदर तलब चूँकि बहुत है ना कि नेकियाँ करें, तड़प है, मतलब जैसे यहाँ नूरुल कुरान है तो उनकी ख्वाहिश है किसी को बताएं, इधर है आप आइए, क्लासें हो रही हैं। मैंने कुछ लोगों को इस ट्रिप में देखा है, वो किसी के साथ काम कर रहे हैं या किसी से यानी सीख रहे हैं या कुछ इस तरह, तो वो जहाँ बैठती हैं वो दूसरे को उनके कांटेक्ट देने, बात करने, रबते नंबर लेने देने शुरू होती। इवन मैंने उनको कुछ प्रोग्रामों के दौरान भी दूसरों से नंबर लेते देते देखा, जो मेरी नज़र में बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं इधर बैठी हूँ और आप दूसरों को कुछ ये बातें शेयर करें, मुझे नहीं अच्छा लगेगा ना। मैंने ऐसे भी देख लिया कि मैं उसको अच्छे पे इसलिए क्यास करती थी कि इनके अंदर कितनी तड़प है ना खैर को फैलाने की। इसके बरक्स मैंने कोई चीज़ जो देखी है कि देखिए ना, अल्लाह ने जिसको सुनाना होता सुनवा देता है। अब तो इस बात का तमा ही ख़त्म हो गया कि किसी को कहो। कल जहाज़ में थे, मैंने आपको भी सबको बता, हफ्ते में 2 फ्लाइटें आती हैं भैया ये की। कल मैं पूरा वक्त जहाज़ में, जो मेरी सोच रही, सारे पाकिस्तानी देसी, और 3 4 तो हमारे अपने जानने वाले मिले मुझे, एक जहाज़ से उतरते हुए मिली, एक बैठने के बाद मिली, यानी हमारे अपने लोगों में से भी कल 2 3 लोग आए हैं। तो 7 घंटे की फ़्लाइट है। मैं सोच रही थी कोई इस जहाज़ वालों से बात करके, कम अज़ कम और कुछ नहीं, देखे ना ओस्लो में ऐसे जा रहे हैं ना, तो इधर बच्चों का, औरतों का स्कूल है, और अगर कोई एडवर्ट, चले मैं नहीं कहती कि रिकॉर्डिंग सुना सके, लेकिन हम सीडीज दे सकते हैं, हम वर्बली तो वन बाय वन तो वो किसी को भी नहीं रोकते सारा रास्ता, बल्कि एयर होस्टेस मेरे से आके एडवाइस लेती रही। और किसने उनको मेरे पास भेजा? आपके सर ने, कि इसका कोई दुख है जाके इसको। मैंने कहा आपको कैसे, उसने कैसे दुख छेड़ा? मैं कहते हुए मैं नमाज़ पढ़ने पीछे गया था, तो जब नमाज के लिए जाए नमाज उस उधर पूछा पढ़ लूँ, तो मुझे कहने लगी कि सर मेरे लिए दुआ करें। तो मैं, इन्होंने आगे से पूछ लिया क्या दुआ करूँ, वो पता नहीं इतनी दुखी थी बेचारी, उसने अपना दुख शुरू कर दिया। इन्होंने कहा ओके स्टॉप, लेट मी, आई विल सेंड माई वाइफ, मेरी बीवी है मैं उसको भेजता हूँ। मेरे पास आगे मैं सो रही थी उस वक्त, उठो उठो उठो, एक सिस्टर को तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं कहा अल्लाह रहम करे क्या हो गया उसको। तो बाद में उठो ना, मैंने कहा क्या कहना है फिर, नहीं वो उसको कोई प्रॉब्लम है अपनी फैमिली का और उसको ये वो है, तो तुम जाओ उसकी बात सुनो। मैंने कहा अच्छा मैं अब सो गई हूँ, तो ये मसला तो 15 मिनट में भी सुन लूँगी, मुझे सोने दे, आधा घंटा बाद अभी उठूँगी ना तो फिर। लेकिन इनको बेचैनी लगी हुई थी। खैर फिर मैं उठी, फिर मैं पीछे गई, तो वो एक ख़ास नर्स थी, नर्स नहीं सॉरी एयर होस्टेस थी ना, तो मुझे समझ आ गया यही होगी। तो बहरहाल पे मैंने उससे बात की, बाद में उसको मेरे पास आके भी बैठी ना। तो अब आप देखिए कि अगर किसी ने आपसे खैर लेनी है तो ऐसे भी ले लेता है ना। तो मैं ये सोची थी कि जहाज़ में इतने लोग बैठे हैं, अगर इनको 7 घंटे में अगर कोई 1 घंटे भी एक अच्छी बात सुनने को मिल जाए, हम सीडीज़ बांट सकते हैं, हम अपने स्कूल के फ्लायर बांट सकते हैं, हम फ्री USPियाँ बांट दें, कोई पैसों की कमी नहीं है। लेकिन ये सोच अगर आती है, फिर मैंने कहा मैं बात करती हूँ। फिर मैं जब उतरने लगे तो जहाज़ के जो शुरू में खड़े होते हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि हम लोग ओस्लो में और हमारे पास इधर एक स्कूल है, तो अगर हम उसके कुछ पम्फलेट्स देना चाहें बच्चियों और औरतों का, बच्चों और औरतों का। वो इतना खुश हुआ, कहने उसने मुझे पूरा गाइड किया कि आप नीचे जाएं जो ग्राउंड तब अमला है, PIA कौन से बात करें ये वो, यानी कोशिश की जाए अगर तो। ये हर हफ्ते आपके इस शहर में फ्लायर जो होते हैं उस हफ्ते, सिर्फ उसके फ्लायर भी आप आने वालों को दे दें कि आप आ रहे हैं तो चले जाएँ, लेकिन इसके लिए सोच चाहिए। मुतमईन हो के अगर बैठ गए हैं, ये दरो दीवार क़यामत के दिन गवाही देंगे, याद रखिए। खाली कुर्सियां भी गवाही देती हैं और जिन कुर्सियों पे लोग बैठे, हमारी एफर्ट कितनी है, रिजल्ट्स की तो कभी फिक्र ही नहीं करनी। एक आ गया तो भी बहुत है, सिर्फ एक बंदे से इस 8 सालों में किसी को फ़ायदा अगर हो गया तो काफ़ी है। मुझे हर शहर में एक मिलती है, लंदन में एक सिस्टर है, वो कहती हैं उस साहब सिर्फ मेरे लिए आई थी लंदन, कि मैं इतनी बिगड़ी हुई थी मैं ठीक हो गई हूँ, तो मैं कहती हूँ मेरे लिए ये गवाही काफ़ी है, क़यामत के दिन दे देना। समझ आई है ना, हमारी हजतें तो पूरी हो गई, लेकिन कई लोगों की, क्या इस शहर में लोग परेशान नहीं है, दुखी नहीं है, बीमार नहीं है, उनको कुरान की ज़रूरत नहीं है, और हम सारी हजतें पूरी कर चुके हैं। कल मुझे अफसोस हुआ कि अगर मुझे ये सोच पहले आती तो मुझे तो जहनी तौर पे कोई और बात सोचने का मौका ही नहीं मिला इस दफ़ा, क्या बताऊँ आपको, ना कोई पर्सनल चीज़ है, ना वही पुराना जूता जो 4 साल पुराना है वही पहन के आई हूँ, वही अब आया, वही उसी कपड़ों में गई हूँ, उसी में आई हूँ जिसमें, हालांकि नए कपड़े बहुत बने होंगे, लेकिन जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी वो वही हैं जो मैंने पहननी है। वजह क्या, दिमाग पे एक ही काम था, इस बार तो पढ़ाने का काम था या 2-3 बड़े इशू थे, वरना मेरा दिल कल क्या था कि अगर इस वक्त मेरे पास कोई ब्रोशर्स होते जो हम पाकिस्तान से छपवा लाते, कोई विजिटिंग कार्ड्स होते, तो मैंने खुद ही वो आपके सर नहीं दे आने थे, इतना हिलते जुलते जहाज़ में, मैं इनको कह रही थी अगली दफ़ा आप इन्हें कहें कि मुझे फ्री टिकट दे दिया करें तो मैं सर सर्विंग करा दूंगा, जब बैठे पानी पीने, मैंने कहा, गए तो पूरी बोतल ले आया, उसने 4 ग्लास भी दे दिए, तो मैंने कहा उसने आपको ये भी अब कहा होगा कि सारों को तुम पिलाओ, यानी ये ना बैठे बैठते नहीं है कि फिर बंदे को थकन का एहसास होता है। तो सारी बात का खुलासा ये कि जब दिल में तड़प पैदा होती है ना नेकियां करने की, तो फिर इंसान वो मौके ज़ाया नहीं होने देता। फिर एक और बात, थक गए होंगे आप लोग, लेकिन आपके थकने की वजह कोई नहीं, क्योंकि आप कुर्सी मेज पर बैठे हो, अगर आप ज़मीन पर बैठे होते तो थक जाते हैं। चले पूरा, बस यही टॉपिक पूरा करेंगे इंशाल्लाह। मौलाना अमीनुल्लाह पिशावरी लिखते हैं, अगर आप कहें कि अंबिया और सुलहा भी तो मशहूर हैं तो इसकी क्या वजह है, यानी बड़ा अहम सवाल है, आप चाहते थे कि मशहूर ना हो तो फिर नबी क्यों मशहूर हैं, और नेक लोग जो सालेहीन में से वो क्यों मशहूर हैं, तो उसका जवाब देते हैं कि इसका जवाब यह है कि अच्छी शोहरत तो अल्लाह की नेमत है, काबिले मुजम्मत ये बात है कि इंसान खुद शोहरत और रियासत का तलबगार हो, नीस वो लोग अपने दीन में मजबूत थे इसलिए शोहरत इनका कुछ बिगाड़ ना सकी, बात समझ गए, और ये बात बड़ी सोचने की है कि शोहरत किस लिए हो कि लोगों को फायदा हो। अब आपके नहीं जी, अगर हमने नूरुल कुरान के फ्लायर छाप दिए तो हम बड़े मशहूर हो जाएंगे, तो भाई मशहूर नहीं होंगे, शायद उसमें से एक फ्लायर किसी ऐसी माँ तक पहुँच जाए जिसके बच्चे को हिदायत की बहुत ज़रूरत है, बात समझ गया ना, तो अच्छी। और वैसे भी साहबा ने भी पूछा था कि हम नहीं चाहते कि लोग हमारी तारीफ़ करें फिर भी हमारी शोहरत फैल जाती है, तो फरमाया ये नक्त अलामत है किसकी, मोमिन होने की, यानी ये अल्लाह की तरफ से होता है वो, अल्लाह फिर उस, अल्लाह भी तो पीछे बैठा है ना, अल्लाह भी तो पीछे मौजूद है ना, तो लोगों को आप नहीं भी कुछ कहेंगे तो अल्लाह उनके दिलों में डाल देगा। काबिले मुजम्मत बात क्या है कि इंसान खुद शोहरत और रियासत का तलबगार हो, ठीक है, नीज़ खुद शोहरत चाहना, नीज़ खुद शोहरत चाहना, इसके लिए कोशिश करना, इसके लिए इश्तहारात और ऐलानात में बड़े बड़े नाम लिखवाना, हुकूमती मामलात में दखल देना और ख़बरें लगवाना, ये दुरुस्त नहीं, लेकिन जिसे शोहरत की तलब ना हो लेकिन अल्लाह इसे दे दे तो ये नक़द इनाम है नेक नामी का। आमिश रहमहुल्लाह कहते हैं, मैंने हमने बहुत कोशिश की कि इब्राहिम रहमहुल्लाह को सतून से टेक लगाकर बिठाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। क्या मतलब, अच्छी जगह दी कि आप यहाँ बैठे, कुर्सी मेज़ पेश किया, स्टेज पे बिठाना चाहा, लेकिन उन्होंने इनकार किया, क्यों भला, कि मैं लोगों की नज़रों में बड़ा ना बनूं। मुगीरा रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि इब्राहिम रहमहुल्लाह सतून से टेक लगाने को बुरा समझते थे। मगीरा रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि इब्राहिम रहमहुल्लाह कोई हदीस पहले शुरू न करते थे हत्ता कि इनसे पूछी जाए, ये भी बड़ा मसला है, आए जाए कुछ ना जा, कम आए ज़्यादा जवाब देने को हम तैयार हैं, तो जब तक कोई खुद ना कहे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इब्राहिम रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि अलकमा रहमहुल्लाह ने कहा, जिस वक्त अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने वफात पाई, इनसे कहा गया अगर आप बैठ जाते तो लोगों को हदीस पढ़ाते, उन्होंने कहा क्या तुम चाहते हो कि लोग मेरे पीछे चलें, यानी लोग मेरी ये बात मशहूर कर दें कि देखो बीमारी के मौके पे भी पढ़ा रहे थे, यानी उनकी सोच का अंदाज़ समझ आ रहा है, यानी ये बात मेरी वजह शोहरत बन जाती। मंसूर रहमहुल्ला बयान करते हैं कि लोग उलमा को बुरा ख्याल करते थे कि इनके पीछे चला जाए, यानी बहुत ज़्यादा, आज भी देखिए कुछ लोग सिर्फ नामों ही के पीछे लगे होते हैं, माननी उन्होंने फिर भी अपनी ही है, लेकिन कुछ नामों को लेकर अपना दीन पूरा कर लेते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमहुल्लाह ने कहा, ये ऐसा दौर है कि तुम अपनी जगह मख़फ़ी रखो, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो और अपनी गलतियों पर रो, ये तो मुझे लगता है मुझे कोई कह रहा है। आप देखिए कि ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है हमें दोबारा नए सिरे से लेने की ज़रूरत होती है, हम ठंडे हो जाते हैं, हम देने वाले जो बन गए तो हमें यही बहुत अकड़ आ जाती है कि जी बहुत है हमारे पास, तो हमेशा अपने लिए कुछ ना कुछ पीछे रखें, आप खुद भी अपने अंदर इस चीज़ को महसूस करेंगे। आप अगर बैठ के नहीं सुनते, हर रोज आप खुद नहीं लेते, अगले दिन आना मुश्किल होगा, आप ले भी नहीं सकते पूरा। फजैल बिन इयास कहते हैं कि सलफ में से बास के पास जब चार या चार से ज्यादा आदमी बैठते तो वह अपनी शोहरत के अंदेशे से उठ जाते थे, यानी लोग ये ना कहें कि इनके पास बहुत लोग आते जाते हैं। अबू इसहाक फजारी रहमहुल्लाह का कौल है, बास लोग जिनकी बड़ी अच्छी सना की जाती है, अल्लाह के नज़दीक वो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होते। अल्लाह मला तजलना मिनहुम, दुआ कीजिए अल्लाह हमें इन लोगों में ना करे, कि जो लोगों में तो बहुत बड़े बड़े गुब्बारे और अल्लाह की नज़र में एक मच्छर भी नहीं, यानी वो शोहरत के ख्वाहिशमंद होते हैं और चाहते हैं कि इनकी तारीफ की जाए। ऐसे लोगों का नाम दुनिया में मशहूर हो जाता है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इनकी कोई हैसियत नहीं होती। मालिक बिन हारिस रहमहुल्लाह कहते हैं, अलकमा बिन कैस रहमहुल्लाह से कहा गया कि आप मस्जिद में जाकर लोगों को क्यों नहीं पढ़ाते और इन्हें तालीम क्यों नहीं देते। अलकमा बिन कैस रहमहुल्लाह ने कहा, मैं ये नापसंद करता हूँ कि मेरे पीछे चला जाए और ये कहा जाए कि ये अलकमा बिन कैस हैं। आपने वो हदीस भी सुनी होगी अल्लाह के नबी की, पूरी लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका खुलासा यह है कि खुशकिस्मत वो है कि जब वो महफिलों से गुजरे तो लोग उसकी तरफ उंगलियों से इशारे ना करें, यानी मशहूर ना हो, और जब वो मर जाए तो उस पर रोने वाले थोड़े हों। सईद अहमद अर्रफाई रहमहुल्ला ने अपने मरजुल मौत में कहा, तुम हमेशा दम बनकर रहो, सॉरी, तुम हमेशा दुम बनकर रहो, सर बनकर ना रहो, क्योंकि सबसे पहले सर पर मार पड़ती है, यानी सबसे पहले सरदार पर हमला होता है, मातहत पर हमला कम होता है। लिहाजा किसी की मशीखियत के सामने अपनी मशीखियत की गरम बाजारी ना करो, यानी बड़े बनकर मत रहो, छोटा बनकर रहने में फायदा। बात समझ रहे? अब आप दुम और सर का मुकाबला करें जरा, कितने हैं जो दुम बनना चाहते? दुम क्या है? जो किसी के पीछे फॉलो उसको करे, जो उसको कोई कहे वो कर दे, और सर क्या है? मेरी मानो, जो मेरे दिमाग में आए वही ठीक है। सैयदना माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि कुरान हकीम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, हत्ता कि इसे औरत, बच्चा और आदमी पढ़ेगा। फिर कोई आदमी कहेगा, मैंने कुरान पढ़ा, मेरी पैरवी नहीं की गई, अल्लाह की कसम मैं इसके साथ लोगों में खड़ा होऊंगा, शायद मेरी पैरवी की जाए। फिर वो इसके साथ लोगों में खड़ा होगा लेकिन इसकी पैरवी ना की गई। फिर वो कहता है कि मैंने कुरान हकीम पढ़ा, मेरी पैरवी नहीं की गई, अलबत्ता मैं अपने घर में मस्जिद बनाऊंगा, शायद कि मेरी पैरवी की जाए। फिर वो अपने घर में मस्जिद बनाता है तो इसकी पैरवी नहीं की जाती, तो वो कहता है कि मैंने कुरान हकीम पढ़ा लेकिन मेरी पैरवी नहीं की गई, मैं इसके साथ लोगों में खड़ा हुआ हूँ तो मेरी पैरवी नहीं की गई, और मैंने अपने घर में मस्जिद बनाई तो फिर भी मेरी पैरवी नहीं की गई। अब मैं इनके पास ऐसी बात यानी बिदत लेकर आऊँ, ये गौर से सुनिएगा, हक बात बयान करते रहे, लोगों ने नहीं मानी। कुरान सुनना था तो चार बंदे, दो बंदे, ढाई, ढोटकू जिसको कहते हैं, परवाह नहीं थी। और अगर मैं ऐसी बात यानी बिदत लेकर आऊँगा जिसको अल्लाह की किताब में नहीं पाएंगे और ना ही उन्होंने रसूलुल्लाह से सुनी होगी, इस तरह शायद मेरी पैरवी की जाए। यानी आज बिदत की महफिलों में हज़ारों के मजमे, और कुरान सुन्नत में वही जिनको जिनके लिए अल्लाह चाहे। सैयदना मास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो शख्स ऐसी बात यानी बिदत लेकर आए, इससे बचो कि वो जो बात लाएगा वो गुमराही होगी। उलमा में ये मरज़ आम है कि वो बिदात की तरफ या अपनी जमात की तरफ दावत देते हैं और दावत इलादीन और या दावत इलाल्लाह नहीं देते। इसको हाईलाइट करें। किसी का मैं एक बयान सुन रही थी, मेरे साथ कोई और था तो कोई क्लिप खुल गया, तो जो उसमें उन्होंने बात बयान की वो बिल्कुल ही अबस थी। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो बात बिल्कुल नहीं, मैंने तो नहीं आज तक पढ़ी। तो उन्होंने, जो मेरे साथी, उन्होंने कहा कि ये अक्सर ऐसी ही रिवायतें बयान करते हैं। तो मैंने कहा क्यों? कहती इस तरह फिर लोग खुश होते हैं, लोग फिर जज्बाती होते हैं, कोई रोता है, कोई धोता है, कोई कुछ। तो मैंने दिल में सोचा कि, उधर तो बात ख़त्म कर दी, लेकिन मैंने अपने दिल में सोचा कि क्या अल्लाह के नबी की सही रिवायतें इस काबिल नहीं है कि लोगों के दिल पिघले? और अबू बकर और उमर और उस्मान का ज़यीफ़ रिवायतें सुन सुन के ईमान पे आए थे। याद रखिए, जैसी जज्बाती तकरीरें सुन के आते हैं ना, ज़यीफ़ रिवायतों की बुनियाद पे ख़ास तौर पे वो पलट भी जल्दी जाते हैं। सुनते रहेंगे तो ठीक है, बाद में बदल जाएंगे। तो बरकत कब है? जब अल्लाह और उसके रसूल की बात होगी। वो थोड़ी हो, थोड़े हों, खैर है। फिर देखिए दूसरा कितना अहम जुमला है ना, कि बुलाते अपनी जमात की तरफ है लेकिन दावत इल्लाह या इल्लादीन नहीं होती। तो अल्लाह से ये दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह हमें लोगों को तेरे से, तेरे कुरान से, तेरे कलाम से, तेरे नबी से जोड़ने वाला बनाए, ना कि अपने नामों से। नाम एक तारुफ है बस, कि यहाँ से ये चीज़ मिलती है, आके ले लीजिए। आजकल शोहरत का मरज आम है, जैसे उलमा का टीवी चैनल खोल कर बैठ जाना। अब ये इन्होंने लिखा है तो मैं पढ़ रही हूँ, मेरी तरफ से इस पर कोई कमेंट नहीं है। उलमा का फेसबुक पर अपने बयानात या तस्वीरें देना, उलमा का अपने नाम के साथ फलां, मसलन डॉक्टर, प्रोफेसर, कारी, अलमुकरी, शेख, अल्लामा जैसे इल्काब खुद लिखवाना। एक होता कोई कह दे, एक होता खुद लिखवाना, या लिखवाने या लिखने वालों को मना ना करना। उलमा का अपने इदारे खोल कर बैठना और अपनी खिदमात गिनवाना, ये सब असलाफ में नहीं था। इन सब से बचकर रहना चाहिए, वरना शोहरत तो मिल जाए लेकिन अल्लाह की रज़ा शायद ना मिले। देखिए एक चीज़ होती है शोहरत, बहुत लोग जानने लगे, शहर लफ्ज़ भी इसी से ना, शाहरा, मशहूर, शोहरत, शहरीत, ये जो नेशनैलिटी होती है उसको भी शहरीत ही कहते हैं उर्दू में। एक है शोहरत, एक है बरकत। बरकत मांगनी चाहिए। शोहरत के आपको 10,000 लोग जानने लग गए, आपके पास आ गए, बरकत के 100 आए पर जम गए। तो बरकत मिले तो शोहरत फायदा देती है, शोहरत और बरकत ना हो सब छट जाते हैं। शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी वफात से पहले कहा, मुझे सबसे ज्यादा खौफ रियाकारी, मुझे सबसे ज्यादा खौफ रियाकारी और मख्फी शहवत का है। मख्फी क्या होती है? खुफिया, छुपी हुई। मख्फी शहवत से मुराद दिल में कहीं अपनी तारीफ कराने या अपनी शोहरत का मरज छुपा हुआ होना, लेकिन बज़ाहर अपनी शोहरत को और तारीफ को नापसंद करें। हसन बसरी रहमहुल्ला कहते हैं, गुमनामी को पसंद करो, शोहरत से दूर रहो, मगर ये जाहिर ना हो कि तुम गुमनामी पसंद करते हो, इसलिए कि इससे भी नफ्स में गुरूर पैदा होता है। बात समझ रहे? एक तो है ना कि सब जाने और एक ये कि कोई ना जाने, इन दोनों से हटके देखिए बेनियाज रहे। जैसे आप इसको मैं ऐसे के समझ रही हूँ इस वक्त बात करते हुए, एक है हम हर वक्त चल फिर रहे होते हैं, हम कॉन्शियस नहीं होते ना, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी कुछ, और एक है हम शीशे में खड़े हैं, शीशे को में देख रहे हैं। फ़र्क होता है ना, पोज बनता है, देखता है इंसान, अपने एंगल्स देख रहा होता है। शोहरत क्या है? शीशे में होना। और आम हालात के बस बिल्कुल आप कॉन्शियस नहीं है, जो है वो है। हसन बसरी के भी बड़े ना। हाँ, मुसैयब बिन राफे रहमहुल्लाह कहते हैं, जब अलकमा को तलब किया जाता तो अपने घर में पाए जाते हैं। यानी लोग इसलिए भी, और ख़ास तौर पर आप पढ़ के देखें, आज भी और कल भी जितनी इल्मी शख्सियात थी वो सोशलाइज नहीं करती थी। यानी एक तो ना दरसो तदरीस के लिए सोशलाइज करना, एक होता है जो वैसे ही खाने पीने घूमने फिरने, शादी ब्याह, मंगनी दावत, तो वो अपने फालतू वक्त में घर बैठते थे, और घर बैठ के जाहिर है कि फोकस्ड माइंड के साथ समझते होंगे। और मैं सफ़र और खजर में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क देखती हूँ। सफ़र में चाहे वो दीनी सफ़र ही क्यों ना हो ना, तो उसमें माइंड में इतना कुछ चल रहा होता है कि एक्स्ट्रा मुताले अपने लिए या एक पुरसकून सोच या तो गौर व फिक्र का मौका कम मिलता है। हर वक्त हालात ही फ़र्क है, लेकिन जब आप अपने ठिकाने पे, अपने घर पे आते हैं ना, तो दिल करता है कि किताब खोल के पढ़े। एक होता है ज़रूरत के लिए पढ़ना, एक होता है दिल करना। तो उलमा जो भी ये हमारे असलाफ थे, वे घर में इसलिए ज़्यादा रहते थे कि फिर वो अपने फोकस के साथ चलते थे, अपनी लाइब्रेरी में बैठ गए, अपनी जगह जहाँ भी उन्होंने किताबें रखी हैं वहाँ बैठ के उसको पढ़ते थे। असलाफ अपने घरों में रहना ज़्यादा पसंद करते थे ताकि लोग इनके पीछे पीछे ना चले। तो ये था असलाफ का अमल। अब हमारा आपका अमल क्या हो सकता है, इसको हम खुद देखें। कोई बात, आपको इसमें से जो अपने लिए अच्छी लगी है वो शेयर कर सकते हैं। फायज़ा, आपने क्या सीखा अपने लिए?
बंदे को जो भूली हुई बातें हैं वो दोबारा बंदे को याद दिखानी हो जाती हैं। बहुत कुछ अपने अंदर मुहासबा कर रही थी मैं कि क्या चीज़ मेरे अंदर है और क्या नहीं है ना, तो मुझे तो बहुत फायदा हुआ इसका।
अल्हम्दुलिल्लाह जी। ना आप नीला
जी उस्ताद जी, मैं तो शुक्र ही कर रही थी कि मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जिस पे मैं फख्र शोहरत और वो, बस यही है कि अल्लाह का शुक्र है कि बस कुरान से जुड़ी
बची
हूँ
हुई है,
जी।
यकीन करे ऐसा बंदा बहुत सिक्योर है जो वो काम करे जो किसी को नजर ही ना आए। और आज आपको रिसेप्शन से अंदर आके बैठना भी अच्छा लगा होगा, ऐसे भी होता है। चाहे वहाँ बैठती नहीं कि वहाँ आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है ना, यहाँ आपको खुद ब खुद बात समझ आ रही होगी।
उस्ताद जी मैं बैठी हुई है, मुझे याद है जब हम क्लास में बैठते थे तो आप कहते थे कि इस तरफ से शुरू करें, तो मैं आसिया जी को थोड़ा इधर से करके तो मैं इधर स्पेशल आके बैठी हूँ कि मैंने कहा अगर अल्लाह मौका दे रहा तो मैं दाएं से
बिल्कुल
बाएं से।
दाएं से शुरू करना चाहिए जी। आपने ऐसे क्या सीखा?
उस्ताद जी एक 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 बात ऐसी है, सारी बातें लिखी भी नहीं जा रही थी और कोशिश तो थी कि लिखूं, मगर जब लिखने लगती है तो जो उसके उस पर गौर फिक्र है वो फिर कम हो रहा था, मगर एक एक बात ऐसी है जो अपने मुहासबे के लिए, हिसाब के लिए और अमल के लिए ऐसे जैसे सुनहरी असूल है कि इतने से वक्त में इतना इतना
और
कुछ
आपको तो
करना।
सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट बात हुई, मुझे खुद लग रहा था कि शायद बहुत लंबी बात होगी। 2 चैप्टर किए हमने और टोटल 1 घंटा 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है। अब
इसमें
बात
एक एक
करें।
बात भी इतनी अमल वाली और मुहासबे वाली चीज है कि ऐसा लगता है जैसे बहुत खजाना मिल गया थोड़ा सा, इसलिए जरा
अल्हम्दुलिल्लाह
समझ
जी। आप बुशरा जी।
नहीं आ रही। तो मैं सोच रही थी कि इंसान का जाहिर और बातिन एक जैसा हो तो बहुत सारी मुश्किलों से भी बचा जा सकता है और बहुत सी आसानियां भी हो जाती हैं बंदे के लिए।
बेशक जी। आप
मैं भी यही सोच रही थी कि वाकई हर लफ्ज़ ऐसे लग रहा था जैसे वो होता है कि सोने के पानी से लिखने वाले, और ये जो बात थी कि अपनी नेकियों को ऐसे छुपाएं जैसे गुनाहों को छुपाते हैं, तो मेरे जहन में आ रहा था वाकई बंदे से कोई कमी बेशी या कोई गुनाह की बात या कुछ इस तरह की होती है जैसे सिर्फ ये ही होता है कि कोई तनकीद या कोई ऐसी बात के कोई किसी को पता ना चले तो उसको कितनी कोशिश के साथ छुपाया जाता है या उसको पीछे किया जाता है कि किसी का ध्यान ना पड़े, और नेकी को आगे आगे किया जाता है हालांकि उल्ट है।
जी,
उसका
और थोड़ा सा बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। यानी ये जितनी बातें हमने पढ़ी ना, हमें बहुत बड़ी लग रही है ना, एक सिरा सीधा कर ले बाकी ठीक होगा। और वो कह के लिल्लाह ही जो है अल्लाह के, और इसको और भी पीछे ले जाएं, अल्लाह को बड़ा करते जाएं, लोग खुद ही छोटे होते जाएंगे। हैं क्या लोग, आप कभी लोगों को देखे तो वो क्या है। यानी मैं अक्सर देखती हूँ जिनसे लोग मरूब होते हैं, झुकते हैं, जिनके लिए आने में जाने में एयरपोर्ट्स पे जहाज़ों में जी जी हाँ, पहनते उड़ते। मैं कल एयरपोर्ट पे जब बैठी जहर आके, तो मैं औरतों के पहनने ओढ़ने और उनके हाल हुलिये को देख के सोची थी कि इन्होंने, मैंने एक ही फ्लाइट में आना है तो अल्लाह जानता है कि मैं सबसे नरम और सुकून दे कपड़ा पहन के बैठती हूँ कि जिसमें मेरा 7 घंटे का सफ़र, 8 का 9 का जितना भी है, ये मुझे ना पसीना आए ना थकन हो। तो ये जो 9 घंटे इस हाल में बैठेगी तो जब ये निकलेंगी तो अकड़ी होंगी। पूरे एक सिस्टम पूरे जर्क बर्क कपड़ों में थी। मैं ये नहीं कहती कि आम नया जोड़, नए तो सबने पहने होते हैं, अच्छी बात है, मैं कोई तनकीद भी नहीं कर रही, लेकिन सफ़र के आदाब में मैं देखती हूँ कि वो थकेंगी ज़्यादा। और जिस मेकअप में आप उतरी चढ़ी हैं, ये उसमें उतरेंगी तो नहीं, फिर ज़ाहिर है इनको वहाँ जाके इसको सेट करना पड़ेगा ना। तो वो क्यों? क्योंकि लोग देखेंगे, आ रहे हैं तो देखेंगे, जा रहे हैं तो, आगे कोई लेने आए भी, लेने आए घर जाके मुंह धो के कपड़े बदल लेंगे तो वही मुंह रहना है ना। यानी मैं तनकीद नहीं कर रही, मुझे पता है लोग क्या सोच रहे होते हैं, लेकिन यानी लोग छोटे हो जाए जी। आप
जी उस्ताद जी एक अगले दिन वैसे मेरे सामने से एक क्लिप
सही था,
गुजरा
सबको खजूरें दे।
जी,
हाँ
एक ऐसे छोटा सा क्लिप था तो वो मैं देख रही थी, उसमें एक अदबी शख्सियत थी कोई आई हुई थी किसी प्रोग्राम में आए हुए थे, तो वो जो होस्ट थे
इधर से
उनके वो बता रहे थे कि उन्होंने इस शर्त पे आने आए हैं, कहते हैं कि मैं इस शर्त पे आऊँगा कि जब आप मेरा तारुफ ऐसे नहीं करवाएंगे, आप सिर्फ मेरा छोटा सा नाम जिसको कहते हैं फोरनाम वो बोल दें फिर मैं आ सकता हूँ, वरना मैं आपके प्रोग्राम में नहीं। क्यों? तो वो उससे पूछ रहे थे कि आपने क्यों ऐसा कहा था ना कि आप मेरा इतना लंबा चौड़ा ना करवाएं, तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे सारे अपने पाकिस्तानी सब लोग जानते हैं अदब की दुनिया में, लेकिन जो नहीं जानते वो इस लायक ही नहीं है कि वो मेरा तारुफ सुनाए। उनकी बात सुन के सारे हंस रहे, तो वाकई ऐसा भी होता है।
मेरे पास है। आप ले जी नसरीन जी। आप
دن سے تھا وہ بہت زیادہ ریمائنڈر تھے یہ میرے لیے بھی, اور اچھا تو یہ لگا کہ نصیحت تو کروں مگر خود کو. اور ایک تھوڑا سا تھوڑی سی میرے ذہن میں ایک کنفیوژن تھی وہ بھی دور ہوئی آج الحمد للہ. کہیں تفسیر میں سنا تھا کہ جو زمانۂ جاہلیت میں کوئی غلطیاں کوئی گناہ کیے ہوتے ہیں تو اگر وہ نہیں بھولتے علم آنے کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کے بعد بھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اللہ وہ توبہ نہیں قبول ہوئی یا اللہ نے وہ معاف نہیں کیے. کچھ مجھے میرے ذہن میں اس طرح کا کنسیپٹ تھا کہیں سے سنا ہوا. تو آج جب یہ سنا ہے کہ نیکیوں کو یاد کرنا اور گناہوں کو بھول جانا غفلت ہے, تو مجھے تسلی ہوئی کہ شاید اسی لیے مجھے وہ زمانے جاہلیت کی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ میں ایسے کرتی تھی ایسے کرتی تھی.
بس اللہ تعالیٰ ہم سب سے کو بچا کے رکھے. اور جی آپ فرض
ساری ساری باتیں الحمد للہ بہت ہی دل میں اترنے والی تھی, لیکن سب سے پہلا پوائنٹ جو تھا کہ اللہ کا چناؤ, تو میں تو ابھی اسی پہ ہی پورا سیشن جو پہلا ہی تھا کہ راحت کو ترک کرنا پڑے گا, تو اسی پہ ہی اپنا محاسبہ کرتی رہی ہوں کہ واقعی مجھے باقی جو چیزیں تھی اللہ کی راہ میں چیزیں دینی یا دنیاوی قدر مزرت میں کمی چاہیے, یہ مجھے تھوڑی آسان لگی ہیں. سب سے مشکل مجھے یہ لگا ہے کہ اپنے آپ کو مطلب اپنی راحت اور کو اللہ کے رستے میں اللہ کی خاطر مطلب اس کو چھوڑنا.
کئی دفعہ صرف ہمارا نفس ہمیں نیکی سے روکتا ہے, ہم سستی کر دیں, ہم کرنا بھی چاہتے ہیں, یہ مت سوچیں کہ ہم نیکیاں نہیں چاہتے, لیکن صرف ایک چھوٹا سا اندر ایک کیڑا آ جاتا ہے ریلیکسیشن, او خیر ہے کون کرے مشکل ہوگا, حالانکہ آپ کو تو اس کے پیچھے اتنی بڑی نیکی چھپی ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بس وہی بات ہے نا کہ نفس لمارۃ بالسوء, جتنا زیادہ ہم اپنے نفس کے اوپر قابو پائیں گے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے انشاء اللہ تعالیٰ اسے اللہ بچائے گا. جی
یہ سعیدہ جی کی بات ہے کہ یہاں پہ ایک جملہ ہم نے لکھا تھا نا کہ جب نیکی کی باری آتی ہے تو نیکی کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں, تو وہی بات ہے کہ جو آپ نے بھی کہا تھا کہ کئی کتنے کلو میٹر کا سفر کر کے آ کے تو ان کے گھر سے ہی آ کے نیکی لے جاتے ہیں, اور وہ جن کی اپنے گھر میں ہی نیکی ہوتی ہے اور وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے, وہی بات بنتی ہے کہ ہم نیکی کو کس نظر سے دیکھیں.
جی یہ بھی بات آپ نے اچھی سیکھی ہے کہ, اور میں اس کو اس جملے میں کہتی ہوں کہ وہ نظر مانگے جو نیکیاں ڈھونڈ رہے ہیں, اور وہ نظر اللہ سے مانگے جو ہمارے گناہوں کو بھی دکھائے. میں نے اتنا زیادہ اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے, اور لوگ نیکی, اور یہ نیکی کا ہی جذبہ ایسا جذبہ ہے جو بندے کو مشکلات میں پڑھ کر بھی خوش رکھتا ہے. یعنی یقین کریں یہ پاکستان کے ٹرپ میں چونکہ سفر بہت ہے, اور اب ہم اپنے لیے اپنی گاڑی تو نہیں لیتے نا وہاں جا کے, ممکن نہیں گاڑی نہیں, اگر ڈرائیور لے لیں تو ساتھ کیسے جائیں غیروں کے ساتھ جائیں. تین تین چار چار گھنٹے دور سے بھی لوگ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ آنر ہے, اور کچھ لوگوں کی گاڑی مستقل ایسے میرے ساتھ رہی جیسے میری ہے. ایک ہوتا ہے نا کسی کی لی شکریہ تھینک یو, بعد میں گلٹ بھی ہوتا ہے, بعد میں بات بھی سننی پڑ جاتی ہے جی یہ مشکل ہوئی گاڑی نہیں تھی یہ تھی, وہ بھی ان کی پرابلم ہی ہوتے ہیں نا, بٹ آپ کو کوئی یہ فیلنگ دے دے کہ یہ آپ کی گاڑی ہے, کیا بھلا کیا تھا جذبہ پیچھے, کہتے تھے نیکی آپ کی, یعنی آپ خیر کے لیے جا رہی ہیں نا, تو یہ نظر ہے نا, اور یہ نظر کب ملتی ہے, جب آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اور جو بھی مجھے لینے چھوڑنے ہیں میں اس کو ہمیشہ ایک دعا دیتی ہوں کہ اس ٹرپ میں جو نے کی ہو وہ آپ کی ہے, جو کل بھی جنہوں نے ہمیں لیا میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ اللہ کرے اسلو میں جو نے کی میں کروں وہ آپ کے نصیب میں ہو, حصہ تو پڑ جاتا ہے نا, من دال الخیر کفائلی, تو نیکیاں لینے دینے کا یہ موقع, ورنہ کیا مشکل ہے, پیسہ خرچ کرو اور آپ اپنی نیکیاں خود سمیٹو. تو یہ جو ہے نا کہ وتواصب الحق ہی وتواصب صبر, یہ اس کا حصہ ہے کہ دوسروں کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہیے. تو یہاں پہ رک جاتے ہیں, میں نے ابھی ٹائم ٹیبل جو دیکھے نا بھیجا ہوا انہوں نے, تو وہ 12:40 یہی ٹائم ہے جس پہ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے جو کرنا ہوگا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عمل کی توفیق دے, ریاکاری دکھاوے شہرت سے بچائے, اخلاص دے للہیت دے, اور وہ کام لے جو اللہ کی نظر میں قبول ہے. لوگوں کو نہ نظر آئے ہمارا کام کوئی بڑی بات نہیں. ایک یہ بک مجھے وہاں ملی تھی گفٹ میں, تو میں نے پڑھی, تو میں نے آج یہ سوچی ہوئی تھی کہ آپ کو پڑھاتی ہوں, لیکن یہ پوری ایک ٹاپک ہے پورا, پھر میں نے اس لیے اس کو نہیں چھیڑا کہ یہ تو پھر ایک پورا کورس کروانے والی بات ہے. تو سائمہ بھی آ گئی ہیں, تو سائمہ بھی کچھ شیئر کر دیں, میں تو اینڈ کر رہی تھی لیکن آپ کچھ کہیے.
تو مجھے بڑا شدید افسوس اور دکھ ہوا ہوں کہ میں اٹینڈ نہیں کر سکی پورا لیکچر کا.
کوئی بات نہیں, قدر اللہ ما شاء فعل. یقیناً آپ کسی عذر سے رکی ہوئی تھی, ورنہ آپ رکنے والی نہیں. آپ تو دوسروں کو کھینچتی ہیں, تو اللہ کرے آپ کا کام ہو گیا. نہیں, میں نے کہا جس جگہ گئی تھی, جس مقصد میں تھی,
کام کے لیے گئی تھی, اللہ نہ کرے کہ وہ اس طرح. الحمدللہ سر جی, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالی نے توفیق دیا ہمیں.